نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. صورت ان شاء اللہ تعالیٰ آسان ہے. اصل میں تو آپ کو پہلا اور آخری ہی رکوع زیادہ تر سمجھنا ہے. بیچ والا تو رکوع الحمدللہ آپ لوگوں کو سب کو اچھے طریقے سے آتا ہے, اس کو ہم سرسری طور پہ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پہلے رکوع میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اوپر دلائل دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں والذاریات ذروا, قسم ہے الذاریات کی, ان ہواؤں کی جو گرد کو اڑانے والی ہیں. ذروا گرد اڑانا, یہ بھی ایک تاکید کے لیے کرتا ہے کہ اس کے بعد مصدر بھی وہی آ جائے. تو اصل میں پہلی چار آیتوں میں تو, اور آپ دیکھیں گے آیات کی تعداد نہیں دیکھیے گا کہ کتنی آیتیں ہیں اور اتنی ہمیں یاد کرنی پڑیں گی. آپ دیکھیں کئی آیتیں دو دو صرف الفاظ کی بھی ہیں, دو دو الفاظ ہیں. اب جیسے یہ ان آیات میں چار آیات, پہلی ان میں قسم کھائی گئی ہے. پہلی قسم کس بات کے اوپر؟ ان ہواؤں کی جو گرد اڑاتی ہیں. پھر اس کے بعد فالحاملات وقرا, پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو. پہلی جو ایک جو ہیں وہ گرد اڑاتی ہیں ہوائیں, پھر اس کے بعد بوجھ اٹھانے والیاں. یعنی بوجھ کون سا مراد یہاں پہ ہے؟ کہ بادلوں کو اٹھانے والیاں, بادل اٹھاتی ہیں, بادلوں کو لے کر چلتی ہیں, ان کا بھی ایک بوجھ ہے نا. آپ دیکھیں بادلوں کے اندر پانی کی صورت میں منو ٹنو وزنی بوجھ ہوتا ہے, تو وہ اٹھاتی ہیں. فل جاریات یسرا, وہ ہوائیں جو چلنے والی ہیں ساتھ آسانی کی. اب میں ہوا اپنے طور پہ کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ ہوا نہیں لکھا ہوا, لیکن چلنے والی ہیں, آپ کو سمجھانے کے لیے چلنے والیاں ہیں آسانی کے ساتھ. یہ جو پہلی دو آیات ہیں نا, یہ تو ان سے مراد تو ہوا ہی ہے, لیکن باقی یہ جو دو آیتیں تیسری اور چوتھی ہے, اس سے مراد, علماء میں کچھ اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں کہ مراد ہیں ہوائیں اور کچھ نے کہا کہ جاریات یسرا سے مراد کشتیاں ہیں. اور فل مقسمات امرا, تقسیم کرنے والی ہیں کام کو, اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق مخلوق کے درمیان تقسیم کرتے ہیں بارش وغیرہ کو اور اس کو پانی کو. لیکن یہ روایت ضعیف ہے جس کے اندر یہ معنی ہے. اصل معنی جو ہے وہ ہوا کا ہی ہے, کیونکہ جب فا آ جاتا ہے تو یہ جو فا ہے نا, یہ ایک پھر کا معنی, جیسے ہم کہتے ہیں یہ بات ہوئی پھر یہ ہوئی پھر یہ ہوئی, تو اس میں سیکوینس بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے کون سی ہوئی, پھر اس کے بعد کون سی ہوئی, پھر اس کے بعد کون سی, اور ایک ہی چیز کو آپ مینشن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی ہواؤں ہی کی بات آ رہی ہے کہ ہوائیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ہواؤں کی. اب قسم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے کوئی قسم کھا رہے ہیں کہ وہ چیز بہت عظمت والی ہو, بہت تعظیم والی ہو, یہ نہیں ضروری ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ قسم جب کھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں, گواہ بنا رہے ہیں ان ہواؤں کو جو گرد اڑاتی ہیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. پھر یعنی گرد اڑاتے ہوئے پھر وہ یہ بادلوں کو لے کر جاتی ہیں آگے سے آگے, بوجھ اٹھانے والیاں, پھر چلنے والیاں آسانی کے ساتھ. آپ دیکھیں کچھ ہوائیں ہوتی ہیں بہت تیز شدید چلتی ہیں, اور کچھ ہوتی ہیں وہ ملائم آسانی سے چلنے والی ہوتی ہیں. اور وہ جو ایسی ہوائیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ بارش سے پہلے ایک بارش کی آمد کی خبر دیتی ہیں. ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہوتی ہے نا بارش سے پہلے, ٹھنڈی ٹھنڈی چلنا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بارش کا پتہ دے رہی ہوتی ہے. और उसके बाद फिर ये तकसीम भी करती हैं किसको, अमर को, काम को। कौन सा काम? वो जो अमर का माना हुक्म का भी होता है, काम का भी होता है, मामला जिसको हम कहते हैं। तो वो मामले को तकसीम करती हैं, यानी कहीं बारिश बरसाती हैं, कहीं नहीं बरसाती, कहीं थोड़ी होती है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं बहुत ही इतनी ज्यादा होती है कि हर चीज ही तबाह हो जाती है। तो तकसीम करती हैं अल्लाह के हुक्म को, जहां जहां करनी है वहीं पे एक्यूरेटली करती हैं। तो इन चार आयात में अल्लाह ताला ने कसम खाई है हवाओं की ही, और कसम खा के अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, किस बात के ऊपर कसम खाई गई है, वो बात अहम है, देखने वाली है। और ये सारा एक समझ लें बारिश का ही प्रोसेस है ना। बारिश में क्या होता है, हवाओं का ही सारा अमल दखल होता है। अगर आप वाटर साइकिल आप पढ़ें तो अब तो अब साइंस ने आपको बता भी दिया है वाटर साइकिल कैसे चलता है, कैसे हवाएं वो समुन्दर से बुखारात की शक्ल में पानी को उठाती हैं, फिर बादलों के अंदर होता है वो पानी, फिर वो हवाएं लेके उन बादलों को चलती हैं, और फिर जब वो इवेपरेट होके ऊपर जा रहा होता है वो भी हवाओं के जोर के ऊपर ही जाता है ना। हवा ही ऊपर लेके जाती है, फिर बादल चलते हैं, फिर वहां जहां पहुंचना होता है बादलों ने वहां तक पहुंचाती हैं, बोझ भी उठाए होती हैं ये हवाएं लेके जा रही होती हैं, टनों टन मनो मन पता नहीं कितना लाखों टन पानी उसे भरे हुए बादलों को ले जाना, फिर उसके बाद जिस जगह उनको पहुंचाना है वहां पे, फिर यहाँ पे थोड़ी बारिश करनी है बस इतनी यहाँ पे हो गई, फिर और लेके आगे जाती हैं उन बादलों को, फिर जहां पे असल बरसने हैं वहीं पे उनको ठहराए रखती हैं। तो इसमें हवाओं का कितना अमल दखल है, आप देखते हैं, गौर किया आपने? अल्लाह ताला ने उन हवाओं की कसम खा के फरमाया, इन्नमा तुअदून लसादिक, यकीनन जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो सच्चाई है, वो सच है वो बात। कौन सा वादा? जैसे मैंने आपको बताया कि यानी अकीदे आखरत के ऊपर बार बार इस सूरत में भी आप देखेंगे जोर दिया जा रहा है, और इसी को के ऊपर दलायल दिए जा रहे हैं। इतनी कसमें खाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जिसका वादा तुम्हें दिया गया यानी कयामत, अलबत्ता ये खबर सच्ची है, ये बात सच्ची है, जजा और सजा आने वाली है, होगी, ये आखरत का दिन है, फैसले का दिन है। इन दीना लवाके, और बेशक जो बदले का ना, जजाए आमाल, आमाल का बदला अलबत्ता वाकई होने वाला है, और जरूर वाकई होगा, आएगा, वो आमाल का बदला भी दिया जाएगा, जो रिजल्ट है वो निकलना ही है। तो अब आप देखें इतनी कसमें खाने के बाद अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है, और इंसान को ये देखना चाहिए सबसे ज्यादा कि वो रब जो कसमें खाने वाला है वो कितनी अजमत वाला है, और वो रब अगर कसम खा ले किसी चीज पे तो क्या उस चीज को के टलने का या उस चीज के ना होने का कोई चांस रह जाता है? क्या कोई चांस रह जाता है कि ये चीज नहीं होगी? अस कसम तो आम आदमी भी खा लेना, तो इंसान कहता है फलां बड़ा सच्चा है, उसने कसम खा ली ना वो करके रहेगा, और कहां ये कि अल्लाह ताला कसम खा ले जिसने कौन नहीं कहना और हो जाना। फिर भी अगर कुछ लोग शक करें तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं शक करने वाले मलऊन है, मलऊन है वो, कि यानी देखो कि अल्लाह ताला ने उस रब ने कसम खाई है, वो कसमें खा के बता रहा है, और ये लोग फिर शक करते हैं, इनको फिर भी यकीन नहीं आ रहा, इनके लिए कसमें खानी पड़ रही हैं मगर फिर भी ये अभी तक इसी तजबजब में कि कैसे आएगी, क्या होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और फरमाया वस्समाई दातिल हुबुक, कसम है आसमान की जो रास्तों वाला है, उस आसमान की अल्लाह ताला ने कसम खाई जिसमें रास्ते हैं। और कौन से रास्ते हैं? उस वक्त तो शायद लोगों को ना इतना इल्म हो, मगर आज लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आसमान में भी रास्ते बने हुए हैं, जिन रास्तों के ऊपर ये जो सितारे सैयारे आपके चलते हैं, ऑर्बिट्स जिनको कहते हैं, तो वो क्या है? वो बुक है ना, रास्ते हैं। और हबीका धारियों को भी कहते हैं, धारियां, जैसे जो धारियां पड़ जाती है ना, जो हवा चलती है रेत के टीलों पे, आपने देखा होगा लाइनें लाइनें सी, लहरें लहरें से पड़ जाती हैं। इसी तरह बादलों में भी पड़ जाती हैं, आसमान में भी पड़ती हैं। कैसे वो लाइनें पड़ती हैं? जब बादलों को हवा चलती है तो बादल डिफरेंट शेप्स फॉर्म्स में बन जाते हैं। आपने देखा होगा कई दफा हमें मुख्तलिफ शेप्स नजर आ रही होती हैं, कोई कुछ बन गया है, कोई कुछ बन गया, ऐसे लगता है बादल किसी शक्ल में है, तो वो एक लेयर सी बन जाती हैं, तो वो भी मुराद हो सकता है। तो हुबक का माना इब्ने अब्बास ने ये फरमाया कि जिस चीज की जाहिरी बनावट हसीन और जमील हो, हमवार हो, फिर सितारों वाला आसमान भी है उसनो जमाल भी इसमें आ जाता है, फिर मुख्तलिफ रास्ते भी इसका माना हो सकता है, तो ये सारे ही माने हो सकते हैं। तो बाहर क्या अल्लाह ताला ने ऐसे आसमान की कसम खाई है जो हुबक वाला है, इसमें अब सारे ही माने लेने, और कसम खा के क्या फरमाया, इन्नकुम लफी कौल मुख्तलिफ, बेशक तुम मुख्तलिफ बातें कर रहे हो, जैसे आसमान के रास्ते मुख्तलिफ हैं, या जैसे उसमें लहरें लहरें बन के उसके डिफरेंट पैटर्न्स हो जाते हैं, इसी तरह तुम्हारी बातें भी मुख्तलिफ हैं। किस बारे में? इस बारे में बातें उनकी मुख्तलिफ थी, यही कयामत के बारे में ना, मुख्तलिफ राय, हर एक मुख्तलिफ राय रखता था, इख्तलाफ था इसमें। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अम्मा यतसाअलून अनि नबाइल अदीम अल्लदी हुम फीह मुख्तलिफून, वो सवाल करते हैं उस बड़ी खबर के बारे में, वो जिसके बारे में सारे मुख्तलिफ राय रखते हैं। तो यही यहां पे, इन्नकुम लफी कौलिम मुख्तलिफ, सबकी बातें अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं। क्या बातें थी उनकी? अहले अरब में उस वक्त बाज लोग ये समझते थे, एक तो अकीदा ये था नंबर वन, ये कि कोई कयामत ही नहीं है, कोई बास बादल मौत नहीं। जैसे आज के भी मटीरियलिस्टिक जहन रखने वाले लोग यही समझते हैं ना कि क्या आपने कयामत और इस तरह की बातें रखाई हुई है, ऐसे थोड़ी है, ये कोई कयामत व्यामत कुछ नहीं है। तो एक तो ये अकीदा रखने वाले थे उस वक्त भी, यानी ऐसे लोग थे। दूसरे लोग वो थे जो मेजॉरिटी में थे कि कयामत तो है, लेकिन जैसे हमने पिछली तमाम सूरतों में ऐसे ही पढ़ते रहे ना, कि वो ये कहते थे कि हमारे ये बुत जो हैं, ये हमारे जो नेक लोग थे जिनके हम इतनी इबादत करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, इनके आगे सजदे करते हैं, ये हमारे काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा, यही तो हमारे काम आने वाले हैं ना, ये हमारे सिफारशी हैं, ये वहां पे हमारी शिफात कराएंगे, ये वहां पे हमें बचा लेंगे। तो ये बात सोच के वो मनमानिया करते थे कि बस इन्होंने हमें छुड़ा ही लेना है। और आज तो और भी मुख्तलिफ तरह के कौल हैं, आज तो आज भी देखें कितनी तरह के लोगों की सोच है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ, कोई कहता है कि नहीं ये कभी भी नहीं खत्म होना, ये जो जिस तरह से चीज चल रहा है इसी तरह सब चलता रहेगा, कोई कहता है नहीं भलाई बुराई सब कुछ यहीं मिल जानी है, इसके बाद तो कोई और जहान है ही नहीं, सारी जो भलाई है या बुराई है उसका रिजल्ट यही आ जाएगा। अच्छा, फिर कुछ और हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जहन्नुम तो है ही नहीं, सिर्फ आगे जो है वो जन्नत ही जन्नत है, भला अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम है, सो मर्सीफुल, अब वो क्या जहन्नुम में डालेगा बंदों को? ये भी एक अकीदा लोगों का। तो इतनी तरह के कौल है इसमें, सब जैसे धारियां पड़ी होती है ना, इस तरह मुख्तलिफ पैटर्न्स है, मुख्तलिफ रास्ते लिए हुए लोगों ने, हर एक अपने अपने रास्ते पे चल रहा है। युफक अनहुमन उफिक, फेरा जाता है, इफक यानी जो घड़ी भी बात ना, फेरा जाता है इससे जो फिराया जाए, यानी वो ही इससे फिरता है जो फिराया जाए, यानी जिसकी अकल ही मारी गई हो, जो आखरत के बारे में सारी बातें सुन के भी फिर भी वो समझ बूझ से काम ना ले, वो ही फिराया जाता है। इफ्क का ये भी मतलब होता है ना, किसी को उचक लेना, किसी की मत्ती मारी जाना। तो अनहू से मुराद क्या है? उससे, किससे? आखरत से। आखरत से वही इंसान फेरा जाता है जो खुद ही ऐसा हो कि उसकी अकल ही फिर गई हो। कुतिलल खर्रासून, मारे गए, कुतिला मारे गए, हलाक हो गए, कौन? अल खर्रासून, अंदाजे लगाने वाले। किस बारे में अंदाजे लगाते हैं? ना तो इन्हीं ये कयामत के बारे में, इसके बारे में बस अपने अंदाजे लगा रहे हैं, गुमान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, अगर तुमने अंदाजों से इसके बारे में राय कायम की, अकीदा रखा, तो बस मारे गए। क्योंकि अंदाजों से ये बात नहीं हो सकती। जाहिर है किसी ने जाके देखी तो नहीं, कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होना है। जो अपने नफ्स से खुद ही फैसला कर रहे हैं ना, वो बस गए। फिर देखें, आखरत के बारे में हम खुद अंदाजों से बात नहीं कर सकते। हकीकी इल्म होना जरूरी है, और जो अल्लाह की तरफ से आए वही हकीकी इल्म है। कोई साइंस नहीं हमें बता सकती, कोई और मैथ्स नहीं, कोई कोई चीज नहीं हमें बता सकती, ना ये अपने जहन से फैसले किया जा सकते। ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई, कोई कह रहा है आनी नहीं है, कोई कह रहा है कि बस जन्नत जहन्नम यही है, यही दुनिया में दुख गम मिल जाते हैं, वही यहाँ की बस, जो किसी ने जुर्म किया उसका भी उसको यहीं पे सजा मिल जानी है, और किसी ने अच्छाई की तो उसको भी यहीं पे उसका बदला मिल जाएगा, तो बस यहीं पे सारे फैसले हो जाने, यही बस दुनिया है, और बस ऐसे। अब ये फैसले कहाँ से कर रहे हैं? खुद से खुद करने लगे में, तो ये अंदाजा ही लगाना हुआ ना। फिर इसी तरह अब ये जो लोग ये कहते हैं, ये भी बहुत लोगों से सुना गया है कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। जब वो इतना गफूर रहीम है तो भला ये कैसे हो सकता है कि जहन्नुम में वो डाले बंदों को? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ डरावे के लिए कहा गया है, और तो कुछ भी नहीं है। और देखना वहां पे जाके सिर्फ जन्नत ही होनी है। ये कहां से लेकर आए, किधर से ये बातें लेकर आए ना? कोई इनकी हकीकत नहीं है, कहीं से पता नहीं चलता, सिर्फ अंदाजे ही हैं, खुद ही घर बैठे बातें बनाते जाते हैं। तो आखरत ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आप जस्ट एजम्पशन से काम लें, जस्ट एज्यूम कर लें। इसके बारे में ऑथेंटिक नॉलेज होना जरूरी है, पक्का यकीन होना। क्योंकि ये अगर पक्का यकीन ना हुआ और इंसान वहां पहुंच गया, तो अंदाजे लगाने वालों का सोचें क्या हाल होगा। वहां पे जब जहन्नुम भी नजर आएगी और वाकई कियामत बर्पा हो जाएगी, और जैसे अल्लाह ताला ने बताया वैसा ही हो गया, इनके लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। फिर वहां पे तो मारे ही गए ना ये। और इंसान अंदाजे किस चीज के बारे में लगाता है? इसके बारे में उसका ज्यादातर नॉन सीरियस एटीट्यूड हो। आप भला कोई जिस चीज में आप बहुत सीरियस होते हैं, क्या कभी उसके बारे में अंदाजे लगाए? मसलन आप एक बस में सफर करना है, तो आप कहें कि अच्छा मैं किसी भी बस में बैठ जाऊंगी ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगी, तो चलो कहीं भी पहुंच जाऊं, बस ठीक है, जहां मैंने पहुंचना है वहां पे खुद ही पहुंच जाऊंगी। अब मैं किसी भी बस में बैठ जाऊं बस अंदाजा करके, तो क्या मंजिल पे पहुंच सकती? नहीं। और ऐसा हम कभी नहीं करते, जरूर नंबर चेक करते हैं, जरूर मैप देखते हैं, जरूर उसका राउट देखते हैं, कहाँ से गुजर के जाएगी, कहीं गलत जगह ना पहुंच जाओ। हर अगर गलत जगह पहुंच भी गए तो वापस आ सकते हैं, मगर हम इतनी सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं करते। मगर कयामत के बारे में, जहां से कोई वापस नहीं आने का, उसके बारे में इंसान इतना रिलैक्स एटीट्यूड क्यों रखता है कि बस अंदाजे ही लगाता रहे? तो ऐसा शख्स फिर कामयाब नहीं हो सकता। अल्लदीन हुम फी गमरतिन साहून, और वो गमरा में है, साहून भूले हुए हैं। और गमरा का ये माना भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, गहरे पानी के अंदर जाकर डूब जाना, वशी की सीते कैफियत आ रही है ना। और इसका ये भी माना होता है इसी से कि अल गमरा वो चीज है जो किसी को छुपा ले, ढांप ले, जैसे गमरातुल मौत है ना, मौत की सख्तियां जो इंसान को ढांप लेती हैं। तो वो इतने ज्यादा गर्क हैं, इतने गर्क हैं, किस में गर्क है, किस चीज में वो गफलत में पड़े हुए, दुनिया में, अपनी दुनिया की, अपनी ख्वाहिशात में, दुनिया की दौड़ में इतने मदहोश हैं कि साहून भूले हुए हैं, दुनिया की रंगीनियों में, खेल कूद में ऐसे मशगूल हुए पड़े हैं। असल में इसी की वजह से तो वो अंदाजे भी लगाते हैं ना, क्योंकि जाहिर है जब इतने दुनिया में भूले हुए हैं तो अब इसको तो सीरियस लेते ही नहीं है, कयामत भी कोई आनी है या कुछ है, वो उसके भी फिर अंदाजे लगा के आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ भी उनके लिए कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो अपने मजे करने में लगे हुए हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं, उसमें गर्क हुए हैं, इसकी वजह से इनकी अकलों पे भी पर्दे पड़ गए। और आज देखें 90% ना सही तो 70% लोग तो ऐसे ही हैं ना, 70% तो कम अज कम इंसानियत ऐसी है जो वाकई ही गफलत में पड़ी हुई है, भूली भी है कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने खड़े होना, रुक के सोचना ही नहीं चाहते कि मुझे जिंदगी क्यों मिली है, मैं यहां पे क्यों आई हूं, मेरा मकसद क्या है, कुछ होश नहीं अपने अंजाम का, कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे लोग गर्क हैं अपनी ख्वाहिशात में और फिर भूल के बैठे हुए उस दिन को, हालांकि कितनी दिन तक इस जिंदगी के मजे उठाएंगे। ऐसे लोगों के लिए सोचें कि आखरत एक कितनी हलाकत खेज चीज होगी, क्योंकि उन्होंने कभी उसकी तैयारी के बारे में नहीं सोचा, कभी आगे जाने का सोचा ही नहीं। और इसमें सो कॉल्ड मुसलमान भी, अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमान भी शामिल होते हैं, उनके भी हालात कुछ ऐसे ही चलते हैं कि इतना भूल के जिंदगी गुजार रहे हैं कि अगर उनसे झंझोड़ के उनको कहा भी जाए ना कि कुछ सोच लो अपने अंजाम को, कुछ आखरत को, कुछ अल्लाह के सामने जवाबदेही को, तो आगे से क्या जवाब मिलता है, बस बस नहीं डराएं, बस जब आएगी तो देखा जाएगा, जरा देर को सुनेंगे उसके बाद सर झटक के चले जाएंगे, बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड। ऐसे लोग मारे गए, फिर ऐसे अंदाजे लगाने वाले ये वो लोग हैं जो बस गफलत में पड़े हैं। और ये दुनिया का नशा ऐसी चीज है कि जो बहुत कम ही उतरता है इंसान के सर से, शराब का नशा तो फिर भी एक वक्त में जाके उतर जाता है, दुनिया का नशा नहीं उतरता। और ये दुनिया का नशा ऐसा है जो इंसान को उसके रब से दूर कर देता है, इंसान फिर उसमें ऐसा मदहोश होता है कि होश तभी आती है जब मौत के फरिश्ते लेने आ जाते हैं, उससे पहले नहीं इंसान को होश आती। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल ना करे जो इस तरह गर्क कुएं में और अपनी आखरत को आग लगा रहे हैं। जब ही तो वो लोग कहेंगे, जब फरिश्ते उनको लेने आएंगे, या हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो, थोड़ा सा और वक्त दे दो, इतना वक्त दे दो कम से कम कि हम वापस चले जाएं और कुछ नेक अमल कर लें, कि अब हकीकत का पर्दा उठ गया, अब सामने वो दुनिया नजर आने लगी, अब पता चला कि अल्लाह फायदा और नुकसान क्या चीज होती है, कामयाबी और नाकामी का असल जो डेफिनेशन है ना, वो यहां नहीं पता चल सकती, वो जब पर्दे उठेंगे तो पता चलेगी, अच्छा कामयाबी ये होती है और ये है नाकामी जो हमेशा की नाकामी है, इसका तो पहले होश ही नहीं था, इसके ऊपर तो नहीं कभी सोचा था, क्योंकि गफलत में पड़े हुए थे, भूल के जिंदगी गुजार रहे थे। कितने लोग हैं जो रोज अपनी आखरत को याद करते हो, हम में से कितने लोग हैं बताएं जो ये रोज सोचते हो कि हमें अल्लाह के सामने एक दिन हाजिर होना है, मैंने अल्लाह के सामने खड़े होना है, मैं फिर क्या जवाब दूंगी। कितने लोग जवाबदेही को याद करते हो रात को और रोते हो, कितने लोग हैं हम में से। अभी हम जो कुरान पढ़ने वाले हैं उनको नहीं अगर याद रहता, बाकी जो ना कुछ जानते हैं ना कुछ हैं, दुनिया में गर्क हुए हैं, उनकी जिंदगी क्या है, खाना पीना सोना पहनना यही बस जिंदगी है, फन سیر و تفریح اتنے گم ہیں. آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں, اپنے خاندانوں میں ایسے لوگ ملیں گے, اپنے دوست احباب میں ایسے لوگ ملیں گے, بالکل غرق ہیں. ایسے لگتا ہے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کیا ہمیں کوئی واپسی بھی ہے. جب مرنا ہوگا تو ایک دن دیکھ لیں گے, مرنے کی تو بات ابھی تو نہ کرو, ابھی تو مزہ کرنے دو. تم کیا قرآن پڑھنے لگی اب, بس یہ مرنے مرنے کی باتیں ہی بس حربت کرتی رہتی ہو. یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی, ان کو جگانا چاہے بھی تو جاگنا نہیں چاہتے. ڈیپ سلیپ میں سوئے ہوئے, بہت گہری نیند سو رہے ہیں. آنکھ تب کھلے گی جب موت کا وقت آ جائے گا, جب وہ حقیقت آ جائے گی. ہم سوچتے ہیں نا ہماری ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, نہیں ابھی سوئے ہوئے ہیں. جب آنکھ کھلے گی تو تبھی کھلے گی جس وقت وہ آخرت کے حالات نظر آنے لگیں گے. اب آنکھیں صحیح کھلی ہیں, اب نظر آ رہا ہے آگے کیا ہے. یہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, بھولے میں. انہی کو تو جگانے کی ضرورت ہے, انہی کو تو قرآن کی طرف لانے کی ضرورت ہے, انہی کو تو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھو, پڑھ کے دیکھو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ. مت اس بھول میں زندگی گزارو کہ کچھ نہیں ہوگا, جب رب نے اتنی قسمیں کھا کے فرما دیا کہ یہ ہو کے رہے گا, اب اور کس چیز کی گارنٹی کی ضرورت ہے ہمیں؟ اور کون کتنا اس کے بعد ہمیں یہ اس چیز کا یقین دلائے گا, جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. اس قرآن پہ تو یقین ہے نا کہ یہ سچی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہے, ہر مسلمان کا ایمان ہے. تو پھر مسلمان کا یہ ایمان کیوں نہیں ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا, اور جس نے اس سے غفلت میں زندگی گزاری, جس نے اس کو بھول کے زندگی گزاری, جو اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا, جو بھولے رہنا چاہتا تھا, اس چیپٹر کو تو اوپن ہی نہیں کرو, اس کو تو کھولا ہی نہیں, اس کو ایک طرف کرو. ابھی ہماری اپنی زندگی چل رہی ہے, ابھی دنیا چل رہی ہے, اس میں خرابی آ جائے گی اگر ہم نے اس کو سوچا. تو وہ تو قتلا, مارے گئے وہ. اور آپ کو پتہ نا الذین کیا ہوتا ہے, کنیکٹنگ ناؤن ہے, جو آگے اسی کا بتا رہا ہے کہ کون سے ہیں وہ خراسون, اندازے لگانے والے. اور بس کوئی نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. تو یہ آپ نے کدھر سے اندازے لگا لیے, خود ہی گھر بیٹھے. قرآن تو پڑھ کے دیکھو, جو کہتا ہے بار بار کہ وہ غفور الرحیم ہے, لیکن ساتھ ہی فرما دیتا ہے وہ شدید العقاب بھی ہے. ساتھ ہی یہ فرما دیتا ہے انا بطش ربی کلا شدید, اللہ کی پکڑ بڑی شدید بھی ہے. ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہو. ساتھ ہی فرما دیتا ہے اللہ اکبر, ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی بتایا گیا. وہ عزیز بھی ہے, بہت قدرت والا ہے, بہت غلبے والا بھی ہے, یہ بھی بتا دیا جاتا ہے. وہ پکڑنے پر آئے تو دیکھ لو ان قوموں کو کیسے پکڑا, کہ پھر ایک بھی نہیں باقی بچا. پھر ان کی رحم کی دہائیاں کوئی کام نہیں آئیں. تو خدا کے لیے غفلت کی نیند سے جاگو, مت بھول کے رہو اس دن کو. جو بھول کے رہا اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. یہی پیغام ہمیں اپنے آپ کو سنانے کی ضرورت ہے بار بار, اور یہی پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. ایک بزرگ تھے, وہ کہا کرتے تھے کاش مجھے کوئی اپنے ساتھ مل جائے, تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں بازاروں میں نکل جاؤں اور دہائیاں دوں وہاں پہ کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, لوگوں جہنم کی آگ سامنے ہے, تم اپنے آپ کو بچا لو. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے, ایمان والوں کو فرماتے, قو انفسکم, بچا لو اپنے آپ کو, واہلیکم نارا, اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ خود کو. قرآن کہہ رہا ہے بچاؤ بچاؤ کی دہائیاں دے رہا ہے, اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. فی غمرت ساحون میں کہیں ہم تو شامل نہیں ہیں, بھول کے زندگی گزارنے والے. اور غفلت ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی, اس قدر غافل ہیں, اتنے ڈوبے میں ہیں کہ سامنے قرآن کی آیات بھی ہوں اور زندگی میں فرق ہی نہ آئے, اور پتہ ہی نہ چلے کہ ان کو کبھی یہ آیات پڑھ کے بھی سنائی گئی یا نہیں. پورے پورے قرآن ختم کر لی ہیں اور غفلت سے آج تک نہیں نکلے, بھولے بیٹھے ہیں, ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے. منافقین کا بھی تو یہی حال تھا, वो भी तो बैठते थे मजलिसों में, यही आयते सुनते थे, टस से मस नहीं होते थे। तो वाकई इस कुरान का असर हर एक के ऊपर एक जैसा नहीं होता, क्योंकि कुरान में नहीं कोई मसला, असल मसला उनके दिलों में है। इसी कुरान को पढ़ के हिदायत भी पा ली बाज ने, ऐसी हिदायत पाई कि रातों को उठ उठ के रोया करते थे, कि उनके रोने से फरिश्ते रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को फरमाया कि कल रात जो तुमने कुरान पढ़ा तो तुम्हारे रोने से फरिश्ते रो पड़े। इतना ज्यादा वो ये पढ़ के डर जाया करते थे और ऐसे हिचकियां लेके रोया करते थे। और बाज उन्हीं में, उसी सोसाइटी में रहने वाले, उन्हीं मजलिसों में बैठने वाले ऐसे भी थे जिन पे कोई असर भी नहीं होता था, वो भी गफलत में पड़े हुए थे, भूले हुए थे। तो काफिर ही नहीं भूल रहे, वो लोग जो इसका अकीदा नहीं रखते वो ही नहीं भूल रहे। आज तो अपने मुसलमान भी, कलमा पढ़ने वाले भी भूले हुए हैं, आज तो वो भी गाफिल है। दौड़ लगी हुई, एक दुनिया की ऐसी दौड़ है, करियर की, जॉब्स की, पैसे की, तायुशात की, लग्जरीज एक से बढ़ के एक, इसकी दौड़ इतनी है कि उसमें याद ही नहीं रहता कि वापसी भी कभी है। मुकाबले किस चीज के हैं? चीजों के, पैसे के, जेवरात के, कपड़ों के, इन चीजों के मुकाबले। और जिस चीज में अल्लाह ने मुकाबला करने को कहा कि मुकाबला किस चीज में करो, एक दूसरे से बढ़ो किस चीज में? अल खैरात, नेकियों में, नेकियों में आगे बढ़ो, वो तो भूला ही हुआ है। तो गफलत में है, भूले हुए हैं। यस अलूना अय्याना यौमुद्दीन, सवाल करते हैं कब आएगी क्यामत, कब होगा जजा सजा का दिन। अच्छा, उस वक्त में देख लें तो ये सवाल क्यों किया जाता था? एक बस जाहिर है, जब जिद हो जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दलाइल देते थे, ऐसी कस्मों का बताते थे, ये बताते थे, तो उसके बाद अब उनको कोई जवाब तो आता नहीं था। फिर आगे से कहते थे, अच्छा फिर बता दो फिर कब आएगी, अभी तक तो आई नहीं है, कब आएगी फिर? यानी एक तमस्खर का अंदाज था, मजाक उड़ाने का। तो रोज रोज की ये बातें लगाई हुई है, इतनी बहस होती है, तो क्या बता दो फिर किस दिन आ रही है कयामत। तो आज ये सवाल तो बहुत होता है, 2012 में आ रही कयामत, उसके ऊपर वो बना दी गई फिल्में, और वो इसका बहुत शौक है शायद तबाही देखने का और इन चीजों का, और लोगों को बड़ा शौक से कहते हैं अच्छा कब आएगी कयामत, कयामत की क्या निशानियां हैं, बस उसके बाद क्या, फिर उसी गमरा में, उसी गफलत में, उसी साहून में। यौम हुम आलन नार युफ्तनून, उस रोज वो आग पर तपाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने उसका जवाब नहीं दिया ये कि भाई कब आएगी, अच्छा तब आएगी, जवाब तो ये होना था ना। अल्लाह ताला ने जवाब नहीं दिया, इतनी सख्त बात फरमाई इसके बाद कि इनको पता चल जाएगा, या वो दिन आएगा ना तो ये तपाए जाएंगे आग के ऊपर। जैसा उन्होंने सवाल किया था वैसा ही अल्लाह ने जवाब दे दिया कि फिर जो ऐसी शक करने वाले कयामत के ऊपर, जो इसका अकीदा नहीं रखते, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा कि आखरत पर हमारा यकीन हो, जैसे अल्लाह ताला की जात पे यकीन है ना, उसी तरह आखरत पे भी यकीन होना चाहिए और सही अकीदा होना चाहिए। जो आखरत का अकीदा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वो ही अकीदा होना चाहिए, अपने तौर पे ही नहीं, अपनी खाम ख्यालियों से हर एक ने कोई अकीदा बनाया हुआ, मुसलमानों ने भी अकीदे बनाए हुए। एक मुसलमान ने तो, यानी मैं हैरान होती हूँ कि यानी मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं कि उन्होंने कहा कि मैं ये यकीन रखता हूं कि जो यहां पे है ना मिल रहा आपको, ये जो आपको खुशियां मिलती हैं, वो आपने कोई अच्छे काम किए होते हैं उसी की खुशी मिल जाती है आपको, कोई कामयाबी मिल जाती है। इसी तरह अगर आपने कोई गलत काम किया होता है तो उसकी जो आप बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां, वो उसकी सजा हो गई, तो बस यही सारा कुछ होगा, उसके बाद तो बस वैसे ही मट्टी हो जाएंगे। तो यहीं पे اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, جو بھی دینا ہے نا اس کا انجام وہ یہیں پہ ہو رہا ہے سارا کچھ. یہ عقیدہ ان کا تھا, یہ کہاں سے عقیدہ لیا؟ پھر وہی خراسون والی بات ہو گئی نا, خود ہی اندازے لگاتے جا رہے ہیں. غیر مسلموں کو دیکھ لیں تو ان میں بھی اتنے طرح کے عقیدے ہیں آخرت کے بارے میں, بھانت بھانت کی بولیاں, ہر ایک اپنے طور پہ جو سوچتا ہے وہ یہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہی ہے قیامت کا. تو جس کا عقیدہ غلط ہوا, اس سے ہٹ کے ہوا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, تو پھر قیامت کے دنوں ان کے لیے تو کیا ہے, علن نار یفتنون, وہ آگ پر تپائے جائیں گے. تپایا جانا آگ کے اوپر, ایسے ہی سوچیں جیسے کہ انسان کوئی باربیکیو کرے تو اس کے اوپر روٹی یا کباب رکھ کے تپائے. ذوقو, چکھو فتنتکم, اپنی گمراہی کو, اپنے عذاب کو. اب پتہ لگ گیا نا, اب ہوش آئی ہے یا نہیں آئی؟ اب تو اس غمرہ سے نکل آئے نا, وہ جو ڈبکیاں لے رہے تھے, تم ڈوبے ہوئے تھے, بالکل ڈوبے ہوئے تھے دنیا میں, تو اب ہوش آ گئی. تم تو بڑے شوق سے پوچھا کرتے تھے کب آئے گی. حاد الذی کنتم بہ تستعجلون, اسی کی تم جلدی مچاتے تھے نا, یہی تم چاہتے تھے کہ جلدی آ جائے, کل سے بہتر آ جا, نہیں آج آ جائے. ہم دیکھیں تو صحیح جو تم ہمیں ڈراوے دیتے رہتے ہو, کیا ہے یہ؟ تو دیکھ لیں, اگر انسان غور کرے تو یہ وہ حقائق ہے, یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. اور رب کی بات بدلا نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ کی بات بدلتی نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بتا دیا. ہم اس کو شاید اتنی بڑی چیز نہیں سمجھتے کہ عقیدہ آخرت رکھنا اتنی بڑی بات ہے, یہ ہم نہیں سمجھتے, لیکن یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. یہ وہ لوگ تھے جو فتنے میں پڑے رہے. اپنے فتنے کو ہی اب چکھو, فتنے میں کیا پڑے رہے, یہ کہا گیا نا, چکھو اپنے فتنے کو. اتنا ان کا کیا تھا, جو فتنے کی چیزیں انہی میں غرق رہے. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بتایا فتنہ قرآن میں؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال بھی اور اولادیں بھی فتنہ ہیں. سب سے پہلے مال کی بات کی, پھر اس کے بعد اولاد کی. تو اسی فتنوں کو چکھو, یعنی مال کے اندر ایسے غرق ہو گئے تھے کوئی یاد ہی نہیں تھا کہ واپس جانا ہے. اولاد میں ایسے غرق ہو گئے اس کی محبت کے اندر کہ جائز اور ناجائز کی حد ہی کراس کر دی. تو یہ فتنے ہی تو ہیں, اتنے کہیں باہر سے لانے کی کیا ضرورت ہے, تمہارے تو گھر کے اندر ہی فتنے. یہ تو تمہاری آزمائشیں تھیں جس کا ٹیسٹ تھے تمہارے, جن کا تم نے جواب دے دیا. تم کیا جواب دیتے, تم فیل ہو گئے. یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جو تمہیں لوٹائے جا رہے ہیں. تو یہ کہا گیا اب چکھو اپنے اس فتنے کو, اپنی اس آزمائش کو جو تمہارے پر آئی تھی. یہی ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے کہ لے آئیں عذاب. بلکہ بعض تو اس وقت ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتے تھے, اے اللہ اگر یہ سچا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے, یہ اگر سچا ہے تو ہمارے اوپر لیا عذاب, لیا بس تو ہمارے اوپر عذاب. یہ کیوں کہتے تھے وہ؟ اصل میں لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر یہ سچا ہوتا تو آنا چاہتا عذاب. ہم تو پکار پکار کے مانگ رہے ہیں اللہ لیا پھر عذاب, اگر یہ سچا ہے تو پھر ہم پر کیوں نہیں آسمان سے کوئی چیز کیوں نہیں گر گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ہی جھوٹے. دیکھیں نا کس کس طرح سے وہ یعنی بلیک میل کیا کرتے تھے. اور فرمایا ان المتقین جنات وعیون, بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں, یہ اب دوسرا گروہ ہے جو سیریس لوگوں کا گروہ, جو ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والوں کا گروہ ہے, جو پرہیزگار لوگ. کس چیز سے پرہیز کرتے تھے؟ شوگر سے یا کوئی اور چیز سے, ریڈ میٹ سے؟ نہیں, یہ گناہوں سے پرہیز کیا کرتے تھے, گناہ ان کو سوٹ نہیں کرتے تھے. جو اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں آتی تھی, ان کے قریب نہیں جاتے تھے, کیونکہ ان کو اللہ کا ڈر ہوتا تھا किसी और वजह से नहीं, किसी और नुकसान की वजह से नहीं कि सेहत को नुकसान हो जाएगा, माल में नुकसान हो जाएगा, कई चीजों को तो इंसान सिर्फ इसलिए छोड़ता है ना। ये गुनाहों को किस वजह से छोड़ते थे कि हमारा रब नाराज हो जाएगा, उसकी नाराजगी का खौफ सारी जिंदगी इनको दामनगीर रहा, जिसकी वजह से ये गुनाहों से बचते रहे, नाफरमानियों से बचते रहे। तो ये मुत्तकी लोग कहाँ पे होंगे? जन्नात वायून, बागात में और चश्मों में। और याद रखें, ये रोजा भी हमारे अंदर तकवा ही पैदा करने के लिए फर्ज किया गया। अगर हमारे लिए अंदर तकवा ना आया रोजा रखने के बाद भी, तो वे समझे कि रोजे की हम असल स्पिरिट को ही नहीं पा सके। रोजा भी आपको भूखा प्यासा रखने के लिए नहीं, आपको मुत्तकी बनाने के लिए। अभी तो हम मुत्तकी बने ना इस इतनी प्रैक्टिस के बाद, कि हम डर जाया करें उस चीज से जिसमें अल्लाह की नाफरमानी, क्योंकि हमें इस चीज का बस हर वक्त ख्याल रहे कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए, उसकी नाराजगी को नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती। लिहाजा ये काम भी छोड़ दो, ये काम भी छोड़ दो, क्योंकि ये काम उसको अच्छे नहीं लगते, उसने मना किए हुए हैं। यही तो तकवा है, बस सिंपल बात है। क्या जिससे आप मोहब्बत करते हैं क्या देखते नहीं? जिससे शदीद मोहब्बत होती है, फिर इंसान को क्या हर वक्त डर नहीं रहता पता नहीं ऐसे कोई काम ना हो जाए, नाराज ना हो जाए कहीं, इसका मेरे से दिल हट नहीं जाए। आप कोई ऐसा काम करने में, यानी आप उस तरफ जाते भी नहीं है कि इससे मोहब्बत बहुत है, इसकी बेरुखी में जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यही बात है तकवा में, अल्लाह ताला का नजरें फेर जाना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी नाराज होना उसका मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए गुनाहों से बचती हूं। तो ऐसे ही लोगों के लिए जन्नत और ऐसे ही लोगों के लिए चश्मे, वहां पे चश्मे जारी होंगे वहां पे उनके लिए। और जन्नत का मतलब ही है कि वो जिसमें तरह तरह की किस्म के फलदार दरख्त हो, ऐसे बाग, तो ऐसी जगह पे होंगे वो, जिसके पुरफिजा जगह, जिसके इर्द गिर्द चश्मे भी हैं, दरख्त भी हैं, बहुत खुश मंजर जगह। आखिदीना माताहुम रब्बुहुम, ये भी एक उनकी सिफत आज हम देखते हैं कि वो कैसे होंगे, लेने वाले होंगे। आखाजा कहते हैं मजबूती से लेना, लेने वाले होंगे। माताहुम रब्बुहुम, जो देगा उनको उनका रब। पहले हमने इस तरह की बात ही ना पढ़ी, तो यहां से ये भी पता चलता है कि इसका मतलब है कि वो जो भी अल्लाह ताला उनको नेमते दे रहा होगा ना, उसको खुशी खुशी लेने वाले होंगे, शुक्रिया के साथ लेने वाले होंगे, शुक्र के जज्बे के साथ। देखिए, एक चीज आपको कोई गिफ्ट देता है ना, कोई इनाम देता है, तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, बस उठा के एक तरफ रख दिया, हूं करके उठा के रख दिया। और दूसरे को आप गिफ्ट देती हैं कोई, तो वो इतना खुश होता है, इतना इस चीज को खुशी से लेता है, खुशी से कबूल करता है, आपका शुक्रिया करता है, एक एहसान मंदी का जज्बा होता है उसके अंदर। वो एक अलग चीज है, किसको दे के ज्यादा खुशी होती है? जो शुक्र के जज्बे के साथ लेता है ना, जो खुश होता है, खुश होके लेता है। तो वहां पे भी अल्लाह ताला ने फरमाया ये मुत्तकी लोग ऐसे होंगे कि जो खुशी के साथ लेंगे, खुशी खुशी आगे बढ़ के लेंगे चीजों को। अच्छा, बाज लोग कहते हैं ना कि हमें तो ये चीज इतनी पसंद नहीं है, मसलन कोई कहे मुझे तो मछली इतनी पसंद नहीं है, मैं क्या करूंगी वहां पे तो उसका जब ऐसे ऐसे खाना दिया जाएगा, मछली भी होगी और ये पहली जियाफत जो होगी, और फिर दूध दूध तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद, तो मैं क्या करूंगी दूध की नहरें भी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहां पे जन्नती जो भी चीज लेने वाले होंगे ना, बड़ी खुशी के साथ लेंगे, लपक लपक के लेंगे, तो नाक मुंह नहीं चढ़ाएंगे, बस ठीक है ठीक है ठीक है, तो सही दूध की नहरें हैं तो मैंने क्या करना है, मुझे कौन सा पसंद है, ये वाला एटीट्यूड नहीं होगा। क्योंकि वो नेमते ही ऐसी होंगी जिनका आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ ये तो छोटी छोटी मुमासलत है ना, यहाँ की किसी चीज के साथ क्योंकि वहां की चीजों की कोई मिसाल दी नहीं जा सकती। सो जो थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है उस चीज के साथ उसको बताया गया कि ये चीज जैसे ये तुम्हारी चीज है ना उस तरह से वहां पे होगी, मगर एग्जैक्ट वैसे थोड़ा ही है कि आप गाय भैंस का दूध समझ लें। वो तो गाय भैंसों से निकला ही नहीं होगा, वो शहद तो मक्खी के पेट से निकला ही नहीं है, वो शराब तो वो अंगूरों को नचोड़ के जैसे दुनिया में बनाते हैं गिलास हड़ा के उनको, वो वहां से थोड़ी निकली है। वो पानी आपके ये पाइपों और नलकों से आने वाला पानी और फिर कितनी कितनी देर वो जमा होके फिर आप तक पहुंचने वाला पानी वैसा थोड़ी होगा, वो वहां की चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसीलिए लेने वाले ना बड़ी खुशी खुशी लेंगे, पर फिर ये वो लोग हैं, ये नाशुकरे लोग थोड़ा ही हैं, ये तो शुक्र गुजार लोग हैं। ये दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से आने वाली हर नेमत को एहसान मंदी के साथ शुक्र के जज्बे के साथ लेते थे। लेकिन याद रखें कि इंसान की जो जो खसूसियात बताई गई है ना यहाँ पे कुरान में, वो कोई अचानक से जाके वहां पे नहीं हो जानी कि आप बस यहाँ पे ब्लैक हैं तो वहां पे वाइट हो जाए, ऐसे थोड़ी है। इंसान की जो खसूसियात है यहाँ पे जाहिर है जो अच्छी खसूसियात होंगी वही वाले लोग वहां जाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत जो मैल कुचैल होगा वो पहले खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अदरवाइज इंसान टोटली बदल नहीं जाएगा वहां पहुंच के। तो ये दुनिया में भी ऐसे ही थे कि जब अल्लाह ताला कोई चीज देता था कोई नेमत देता था खुशी से लिया करते थे, ना शुक्री के रवैये नहीं थे इनके अंदर। अब वहां पे भी जाएंगे तो वहां पे भी लेने वाले होंगे जो उनका रब उनको देगा, खुशी खुशी लेंगे, आगे बढ़ के लेंगे, नेमत की कदर करते हुए लेंगे, एहसान मंदी के जज्बे के साथ लेंगे, नाक मुंह चढ़ा के नहीं लेंगे। इन्नहुम कानू क़बल ज़ालिका मुहसिनीन, देख लिया अल्लाह ताला ने फरमाया इससे पहले वो नेकोकार ही तो थे, ये नहीं आ जन्नत में आके ही वो नेक बने हैं, यानी जन्नत में दाखिल होने से पहले वो दुनिया में मुहसिनीन ही तो हुआ करते थे, नेक काम करने वाले हुआ करते थे, उनके कोई काम ऐसे थे जो अल्लाह को बहुत पसंद थे जिसकी वजह से ही तो वो यहां पे पहुंचे हैं। और मोहसिन क्या होता है, मोहसिन किस चीज से निकला, जो एहसान करने वाला। तो मोहसिन की तारीफ क्या हुई, वो जो एहसान के लेवल पे हर काम को करे, यानी क्या मतलब, यानी हर काम जो वो करे खूबसूरती से करे, जी लगा के करे, जी चुराने वाला नाकाम नहीं, अपनी पूरी जितनी उसके अंदर ताकत है सलाहियत है अपनी इम्कानी हद तक पूरी कोशिश करे कि मैं अच्छे से अच्छा काम करके दिखाऊं। इसकी एग्जांपल देखें, अगर एग्जांपल आप वजू करते हैं, एक तो ऐसा ही वजू है ना कि बस गए और कोनियां भी खुश्क हैं और एड़ियां भी खुश्क हैं और नाक में पानी डाला ही नहीं, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से करके आ गए, जैसा तैसा हो गया, बस ठीक है वजू तो हो गया ना। और एक है मोहसिनीन वाला काम करना, वजू भी किया तो अच्छे तरीके से किया, फिर आप जहां नमाज पे खड़े हुए, नमाज सारे ही पढ़ते हैं, एक की नमाज मारे बांधे की नमाज है, एक की नमाज बस ठूंगे हैं, जैसे मुर्गा जमीन में चुकता है इस तरह से वो सजदे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतनी तेज है, इतनी तेज है जैसे कोई पीछे भागा हुआ, जैसे इनको बहुत जल्दी है कहीं भाग के जाना है। और दूसरा है नमाज आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के अच्छी तरह से पढ़ने वाला, कि उसने काम को किया दिल लगा के किया। अच्छा आपको क्या दिल चाहता है, आप कोई मुलाजिम रखे तो अब वो एक मुलाजिम है जो आपका काम करता है ऐसे बस सर से उतारने वाला, कपड़े इस तरीके कर तो दिए लेकिन ऐसे कि बस सर से उतारने वाले, कहीं कहीं सिलवटे हैं कहीं कुछ है, खाना बनाया बना तो दिया कहीं नमक ज्यादा कहीं मिर्चें तेज कहीं कुछ, कहीं खाना गोश्त नहीं सही गला हुआ कहीं ऐसा ला के रख दिया, रोटी आधी कच्ची आधी पक्की कहीं से जला दी कहीं से, रोटी तो पका ही दी ना, अब आपके सामने रखी है जैसी तैसी भी रख दी। और दूसरा है जिसको जो थोड़ा भी काम करता है ना वो इतने सलीके से करता है, इतनी अच्छी तरह करता है कि आपका दिल खुश हो जाता है। आप बताएं दुनिया में ही, आप बताएं आपको कौन सा नौकर ज्यादा पसंद आएगा, अगर दोनों ने इक्वली काम करते हैं, दोनों वही, वो भी रोटी पकाता है, वो भी पकाता है, वो भी सालन बना रहा है, वो भी बना रहा है, वो भी कपड़े प्रेस कर रहा है, वो फिर काम किसका आपको अच्छा लगता है? जो जी लगा के करता है, दिल लगा के काम करता है, अच्छे तरीके से करता है, ज्यादा वक्त में कर रहा है या उसको ज्यादा देर लग रही है या कुछ भी है, लेकिन उसका काम होता बड़ा अच्छा है। तो यही है मोहसिन, वो जो हर काम को अच्छे तरीके से करे। अब देखिए, एक तरफ नमाजें होती थी हज़रत उमर की, दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन उबै भी तो नमाज पढ़ता था, जो रईसुल मुनाफिकीन था, मुनाफिक भी तो नमाज पढ़ा करते थे। तो फिर उनकी नमाजें कैसी थी? अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में कि उनकी नमाजें ऐसी थी कि जब नमाज के लिए आते थे तो बड़ी सुस्ती के साथ आते थे, नमाज के लिए खड़े होते थे तो उसके अंदर नमाज में बहुत कम अल्लाह को याद करते थे। तो नमाजें तो दोनों ही पढ़े, एक्शंस बजाहिर देखें दोनों के सेम है, जमात से नमाज पढ़ रहे हो तो एक जितना ही जाहिर स्पीड तो एक जितनी होगी, क्या फर्क आ जाता है? एक है खूबसूरती से काम करने वाला और एक है जिसका दिल तंग है और मुसीबत में कर रहा है। तो अगर हम जिक्र करते हैं या कुरान पढ़े हैं बस ऐसे ही मारे बांधे का जैसा तैसा पढ़ा, हमें क्या बस कुरान खत्म हो जाए सही, ना कोई हरूफ का हक अदा हो रहा है, ना कुछ मतलब समझ आ रहा है, बस स्पीड एक लगाई हुई है, पता नहीं पूरे लफ्ज भी अदा हो रहे हैं मुंह से के नहीं हो रहे, गलतियां भी बीच में हो रही हैं, लेकिन बस ये परवाह नहीं है, बस स्पीड 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 छोड़ी हुई है। तो ये ब्यूटीफुल काम तो ना हुआ, खूबसूरत काम करके दिखाएं अल्लाह ताला को। ये है मोहसिनीन, हर चीज प्रॉपरली, हर चीज सलीके के साथ अच्छे तरीके से, टॉप लेवल की करना, बेस्ट लेवल की। और ये मोहसिन होना कोई आसान काम नहीं, ये बहुत टॉप का दर्जा है, ये बताऊं, इसलिए कि ये काम भी तो टॉप लेवल के करते हैं, तो ये बहुत टॉप लेवल पे होते हैं। इनकी कुछ सिफात हैं, ये क्या किया करते थे दुनिया में जिसकी वजह से आज ये जन्नत में पहुंच गए? तो कोई तो उनकी बातें थी जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद थी, जिनकी वजह से वो जन्नत के हकदार बने। तो वो इनकी खसूसियात देखते हैं। पहली खसूसियत क्या है? कानु कलील मिन अल्लैल मा यहजाउन, वो बहुत कम रात में सोते थे, रात को कम सोया करते थे। कम सोने का मतलब क्या है? कि रात के वक्त उठ के अल्लाह की इबादत किया करते थे, ऐसे नहीं गफलत में सोते कि बस अब सोए हैं तो आंख ही नहीं खुली। आंख उस वक्त खुलेगी जब दिल चाहेगा, अब चाहे दिल चाह रहा है तो 10 बजे खुले, बहुत ज्यादा नींद आ गई है आज तो 12 बजे खुल रही आंख, रात सारी जागना दिन सारा सोना। देखिए रात को अल्लाह के लिए कौन बिस्तर से खड़ा हो सकता है मुसल्ले पे, जिसने अपना सारा स्केड्यूल इस तरह से बनाया हो कि मैंने तहज्जुद के वक्त उठना है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, उसने अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी। अगर जो इंसान रात को 12-1 बजे सोएगा वो कैसे उठेगा इस वक्त, जिस वक्त जो यानी रात को वो ठीक है जाग तो रहा है, कम सोने वाला ये नहीं है कि रात को सारी रात टीवी के आगे बैठा रहा है, वो बहुत कम सोता है, वो तो बहुत कम वो भी लोग सोते हैं जो पूरी रात क्लबों में होते हैं। यहां मुराद वो है जो अल्लाह के सामने खड़ा होने वाला, जो इबादत करने वाला, जो नमाज पढ़ने वाला, उस वक्त वो मुराद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतनी देर रात में अल्लाह के हजूर खड़े हुआ करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव सूज जाते थे, अल्लाह ताला को खुद कहना पड़ा कि आप कम जागा करें रात को, कम कर दे थोड़ा। कुमिल लैल इल्ला कलीला, तो वो रात को कम सोते हैं, रात को अल्लाह के हजूर खड़े होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा रोजे वो हैं जो दाऊद अलैहि सलाम के रोजे थे। दाऊद अलैहि सलाम के रोजे कैसे थे? वो एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे। और अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा नमाज जो यानी रात की नमाज کی طرف اشارہ ہے, وہ داؤد علیہ السلام کی نماز تھی. وہ کیسی نماز پڑھتے تھے؟ وہ آدھی رات تک سوتے تھے, پھر 1/3 نائٹ قیام کرتے تھے, اور پھر جو رات کا باقی حصہ آخری چھٹا حصہ رہ جاتا تھا وہ سو جاتے تھے. یعنی اس کو ایسے سمجھ لینا کہ فرض کریں رات 6 آورس کی ہے, 6 گھنٹے کی رات ہے, اس کا آدھا نکال لیں 3 گھنٹے ہوا, تو آپ 3 گھنٹے سو کے پھر اٹھ جائیں اور تہائی رات نماز پڑھیں. تہائی رات 6 گھنٹوں کے تہائی کتنے ہوئے؟ 2 گھنٹے. بس 2 گھنٹے نماز پڑھیں, پھر رات کے چھٹے حصے میں پھر سو جائیں. اور چھٹا حصہ کیا ہوگا؟ 6 گھنٹے کا چھٹا حصہ 1 گھنٹہ, تو 1 گھنٹہ سو کے پھر نماز فجر کے لیے اٹھ جائیں. یہ فیوریٹ ٹائم ہے تہجد پڑھنے کا, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے. ویسے تو اور وقت میں بھی اول حصے میں بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ رات کے پچھلے پہر میں نماز پڑھنا اور کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حسن بصری نے فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر سحری کے بعد دعا کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے, زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ جو آخری حصہ رات کا ہوتا ہے اس میں کھڑے ہونا چاہیے. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے. ان کو ظاہر ہے وہ وہی کھڑا ہوگا استغفار کرنے کے لیے, وہی نرم گرم بستر سے نکلے گا جس کو گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ محسوس ہوگا کہ یہ گناہ کی ایک جو شدت ہے اور ایک جو اس کا احساس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو چین نہ آئے, وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہو. تو جس کو احساس نہ ہو اتنا زیادہ, جو بے پرواہ ہو اپنے گناہوں سے, اچھا چلو ٹھیک ہے ہم معافی مانگ ہی لیں گے نا, صبح تو توبہ استغفار کر لیں گے, میں صبح تسبیح کر لوں گی, ایسا کیا ہو گیا کہ ابھی اٹھنا, ابھی اٹھنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے کیونکہ میں تو رات کو دیر سے سوتی ہوں. تو پھر ایسے لوگ کیسے اٹھ سکتے ہیں جن کو اپنے گناہوں کا احساس نہ ہو, یا ان کو انہوں نے اپنی روٹین ہی ایسی بنائی ہو. ظاہر ہے روٹین بدلے گا وہی جس کو یہ سوچ ہے, جس کے لیے یہ پریشانی ہے کہ میرے گناہ بہت ہے اور مجھے اس وقت اٹھ کے معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے, جس وقت کے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا تو میں اس کو بخش دوں, خود اعلان ہو رہا ہے آسمانوں سے کوئی ہے جو مغفرت چاہتا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں, اور یہ پڑے سو رہے ہیں. اس کا مطلب ان کو کیا احساس ہے؟ اپنے نہ گناہوں کا کوئی احساس ہے, نہ اپنی کوئی جو آج تک زندگی میں کیا ہے اس چیز کے اوپر کوئی پشیمانی ہے. یہ ایسے لوگوں کا ہی کام ہے جو نیکیاں کر کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں, نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں. اگر وہ رات کو دیکھیں کوئی انسان رات کو کم سویا ہے تو سحری کے بعد تو بالکل ہی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اب ساری راتوں ہم نے عبادت کر لی اب تو سو جائیں, نہیں, وہ اس وقت استغفار کرتے ہیں, اس وقت معافیاں مانگتے ہیں اللہ سے. اور ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی کی ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ کوئی اس وقت استغفار کرے, یعنی فجر سے پہلے جو وقت ہوتا ہے, اس وقت آپ سحری کھاتے ہیں اور اس وقت انسان کو بہت میٹھی نیند آتی ہے. اچھا دن میں آپ جتنا بھی سوئیں اتنا میٹھی نیند نہیں آتی جتنی اس وقت آتی ہے. تو اس وقت انسان نیند کی لذت کو چھوڑ کے اللہ کے لیے جب کھڑا ہو جاتا ہے تو واہ بھائی, پھر اس انسان کی کیا بات ہے, پھر اس کی اللہ تعریف کرتے ہیں. اور پھر اس وقت دیکھیں بالکل سناٹا ہوتا ہے, بالکل تنہائی ہوتی, جو رات کے جاگے ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت سو جاتے ہیں. ایسے میں انسان جو عبادت کر سکتا ہے اور جو استغفار کر سکتا ہے اور جو اللہ کے سامنے رو سکتا ہے, اس میں کوئی ریاکاری بھی نہیں ہوگی, کوئی دکھاوا نہیں ہوگا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو صحابہ کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا. حضرت ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم بن حاتب نے اپنے والد سے روایت کیا کہ میں نے سحری کے وقت مسجد کے ایک کونے میں ایک آدمی کی آواز سنی جو کہہ رہے تھے, اے میرے رب, تو نے جو مجھے حکم دیا وہ میں نے تیری اطاعت کی, اور یہ سحری کا وقت ہے, تو مجھے معاف کر دے. تو میں نے دیکھا وہ ابن مسعود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے صحابی. اور ابن عمر جو تھے रात को इबादत करते थे, नमाज पढ़ते रहते थे। फिर अपने गुलाम से पूछते थे क्या सहरी हो गई, वो कहता नहीं, तो फिर नमाज पढ़ने शुरू जाते। जब वो कहता था हाँ हो गई, तो फिर बैठ के इस्तगफार शुरू कर देते थे कि खास उन्होंने वो वक्त रखा हुआ था कि इस वक्त हमने अल्लाह ताला से मगफिरत मांगनी। हजरत अनस बिन मालिक वो बयान करते हैं कि हमको ये हुक्म दिया गया कि हम सहरी के वक्त 70 मरतबा इस्तगफार करें। तो जाफर बिन मोहम्मद बयान करते हैं कि जिस शख्स ने रात को नमाज पढ़ी फिर रात के आखिरी हिस्से में 70 दफा इस्तगफार किया, इसका नाम सहरी के वक्त इस्तगफार करने वालों में लिखा जाएगा। तो जो इस वक्त के इस्तगफार है ना, ये कबूलियत वाली है। दाऊद कहा जाता है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ जिब्राइल, रात का वो कौन सा वक्त है जो अफजल वक्त है? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि सहरी के वक्त अर्श हिलने लगता है, ये इतना जबरदस्त टाइम है। तो गाफिल तो सोए रहते हैं, जिन्होंने जन्नत के टिकट कटवाए हुए हैं उनको क्या फिक्र है, उन्होंने तो डायरेक्ट चले ही जाना, तो वो तो फिर आराम से आराम करें, और बाकी जिनको फिक्र है अपनी उस वक्त उठ के तौबा इस्तगफार करें। मखोल ने फरमाया कि जब किसी उम्मत में से 15 आदमी हर रोज अल्लाह ताला से इस्तगफार करते हैं तो अल्लाह ताला उस उम्मत को आम अजाब से हलाक नहीं करता। यानी किसी कौम के अंदर अगर ऐसे थोड़े से भी लोग हों तो अल्लाह ताला उस कौम को अजाब से बचा लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि रूए जमीन वालों को अजाब देने का मैं इरादा करता हूँ, मेरा इरादा होता है कि मैं उनको अजाब दूँ, फिर अचानक मैं अपने घरों को आबाद करने वालों को देखता हूँ, यानी जो मस्जिदों को आबाद करते हैं उनको देखता हूँ, और उन लोगों को देखता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों को देखता हूँ जो नमाज़े तहज्जुद पढ़ते हैं, और उन लोगों को देखता हूँ जो सहरी को उठ के इस्तगफार करते हैं, तो मैं जमीन वालों से अजाब को दूर कर देता हूँ। नहीं, अगर ऐसे लोग ना हों तो जमीन पर कब का अल्लाह का अजाब आ जाए। ये कौन लोग हैं जो तहज्जुदें पढ़ते हैं, जो सहरी के वक्त अल्लाह से उठ उठ के माफियां मांगते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे। अब खुद ही सोचें कि वो इंसान जो अपने आप को बिस्तर से निकाल के खड़ा कर रहा है, जाहिरी बात है उसमें कोई जज्बा होगा नेकी का, उसके अंदर कोई खैर होगी तो अपने आप को उठा रहा है ना। उठाना खुद को उस वक्त कम ही लोगों के लिए पॉसिबल होता है, इंसान सुस्ती कर जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, कल उठ जाऊंगे, कल के बाद फिर परसों उठ जाऊंगे, परसों के बाद अच्छा अब अलार्म ही नहीं लगा, चलो और आज तो मैं बहुत थक गई थी, चलो कोई बात नहीं, कौन सा फर्ज है इस वक्त उठना, कितने सारे बहाने आते हैं ना। क्योंकि वाकई एक ये हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से किसी एक शख्स के रात को सोते वक्त इसके सर के पीछे गुद्दी पे शैतान 3 गिरे लगा देता है, और हर गिरा पे ये फूंक देता है कि रात बहुत लंबी है, तुम सोते रहो सोते रहो। फिर अगर वो जाग जाता है और अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरा खुल जाती है, वो नॉट्स लगा देता है, समझ लो उसको बांध देता है, तो वो जो जकड़ा हुआ है ना उसको एक चेन समझ लें, जैसे वो चेन टूट गई। जब अगर वो उसने इतनी हिम्मत कर ली कि वो उठा और उसने वजू कर लिया तो उसकी दूसरी गिरा भी खुल जाती, और उससे भी ऊपर, जाहिर है उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है कि वजू करना ही मुश्किल काम था, वो उठे और नमाज के लिए खड़ा हो जाए, लेकिन जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है तो उसकी तीसरी गिरा भी खुल जाती, फिर वो सुबह को तरोताजा और खुश खुर्रम होता है, वरना सुबह को सुस्त और नहुसत का मारा हुआ होता है। ये बुखारी में है, मुस्लिम में, निसाई में है ये हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स का जिक्र किया गया जो सुबह तक सोया रहता है, यानी फजर भी गुजार देता है और नमाज पढ़ने के लिए उठता ही नहीं है। अब जिन लोगों को आदत है 9-9, 10-10 बजे उठने की, यहाँ आराम से उठेंगे जब जॉब पे जाने का टाइम होगा उस वक्त उठेंगे, अब वो जॉब पे जाने का टाइम चाहे 8 बजे है, तो अब चाहे जब गर्मियों में तो बहुत अर्ली हो जाती है फजर, तो कौन उठे पहले फजर के लिए उठे, फिर उसके बाद हमें तो अभी फिर 2-3 घंटे होंगे जाने के लिए, फिर दोबारा उठे तो नहीं उठते, फिर उठ के कजा ही पढ़ लेंगे एक ही दफा, फिर वो सारी गर्मियां कजा ही पड़ी जाती है। तो एक आदमी ऐसे आदमी का जिक्र किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सोया रहता है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठता। आपने फरमाया शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। ये बुखारी में है, मुस्लिम में, निसाई में, इब्ने माजा में। शैतान पेशाब कर देता है उसके कान। और ये वाली बात बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वैसे फायदा मंद होती है। आप बच्चों को ये बात बता देना, वो फिर बहुत जल्दी इस चीज को यानी वो करते हैं कि अच्छा अगर हम नहीं उठे तो शैतान पेशाब कर देगा हमारे कान। तो ये वो लोग हैं जो रात को कम सोते। अच्छा फिर ये है, ये तो फजर पे भी नहीं उठते थे ना। वैसे यहां पे जिनका जिक्र किया गया वो तो वो हैं जो फजर से भी पहले उठते हैं और रात को सोते ही कम है। उसके लिए जाहिर है कहीं दिन में किसी वक्त सोना पड़ेगा तभी भी फिर रात को जाग भी सकते हैं और फिर जल्दी भी सोना पड़ेगा। और जिनकी महफिल ही खत्म ना हो रात के 11-11 बजे तक, तो वो फिर कैसे मुझे बताएं कि तहज्जुद के लिए उठेंगे। इस जिमन में एक आप सबसे मैं दरख्वास्त करूंगी जितने सुनने वाले हैं कि कोशिश किया करें कि जो आप दावतें रखें, जो आप मजलिसे रखें, तो ऐसे वक्त तक रखें कि कोई घर में जाके अपने वक्त पे सो सके। ये नहीं कि आपकी 11-11 बजे तक, 10-10 बजे तक मजलिसें चलती रहें। खाना ही अगर आप 9 बजे दे रहे हैं तो कब तक वो बंदा फारिग होगा, घर जाएगा, नमाज पढ़ेगा, कब सोएगा? क्या वो फिर तहज्जुद के लिए उठ सकता है? नहीं उठ सकेगा ना। और अगर वो नहीं उठ सकेगा तो फिर इसका गुनाह किसके सर भी जाता है मुझे बताएं, जो ऐसी मजलिसें रखते हैं जो उनको सारा दिन का ख्याल नहीं आता, जो वक्त जागने का उस वक्त नहीं जागते, जो वक्त सोने का है उस वक्त जगा के खाना खिलाते हैं। वैसे भी सेहत के लिहाज से सही नहीं, लेकिन अगर इस चीज का ख्याल रखा जाए कि अब हर कोई तो नहीं बताएगा कि मैं तहज्जुद गुजार हूं और मैं तो जाके जी तहज्जुद पढ़नी है, मेरी तहज्जुद ना रह जाए, ये तो नहीं कोई कहेगा। लेकिन इंसान को खुद ख्याल करना चाहिए कि इनमें से कोई तहज्जुद गुजार होंगे तो वो कैसे उठेंगे। अगर आप खुद तहज्जुद गुजार हैं तो आपके लिए भी मुश्किल है। आप यकीन करें जब आप कभी ऐसी दावत करते होंगे अपने घर में, आप बताएं उसके बाद आप तहज्जुद के लिए उठ सकते हैं कभी? या आप कहीं से आते हैं किसी ऐसी मजलिस से, रात के 11 बजे घर पहुंच रहे और फिर आके आपको सोते सोते 11:30 हो गए, तो क्या उठ सकते हैं फिर? खास तौर पे जब रातें छोटी होती हैं, ऐसे गर्मियों में रात छोटी हो जाती है, अगर आप 3 बजे उठते हैं, 2:30 बजे उठते हैं, कैसे उठ सकते हैं? तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए हमें, हम खुद भी गुनाहगार ना हो, ये लोगों को बिठाए छोड़े हम इतनी देर तक। अब वो बेचारा मेहमान क्या बोलेगा, जब मेजबान ही खाना इतनी लेट दे तो वो क्या कहेगा? तो ये जो लोग होते हैं ना, इनकी रूटीन ऐसी होती है कि इनका स्केड्यूल ऐसा होता है कि वो दिन में आराम करेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, तभी तो वो रात को उठ के खड़े होंगे ना। एक्सपेक्ट ही नहीं आप कर सकते जो कोई बंदा रात के 12 बजे सोता हो कि वो तहज्जुद के लिए उठ के खड़ा हो जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद ना, बहुत ज्यादा बातें करने को पसंद नहीं फरमाते थे। अनलेस कि कोई रीजन हो, कोई आपका ऐसा मेहमान आया है, कोई रिश्तेदार दूर से आया हुआ है, आप उसको टाइम दे रहे हैं, कोई ऐसा आपका जरूरी काम है, या इल्म के लिए आप जागे में, कोई तालीम के लिए, इल्म सीखने के लिए, सिखाने के लिए, कोई अपनी ऐसी कोई तालीम ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। उसके अलावा बेफजूल बेवजह गपशप के लिए या टीवी के आगे बैठे लोगों को अक्सर देखा गया कि वो जो भी उन्होंने कोई चीज देखनी होती है, कोई फिल्म है, कोई कुछ है, वो रात को लगा देंगे और उसके बाद सारी सारी रात बैठे रहेंगे टीवी के आगे। क्या है जी, वीकेंड है, यानी वीकेंड के पर आप रात को सोने की जरूरत नहीं, आप दिन को सोएंगे। तो कुछ लोगों की रातें गुजरती हैं शैतानी कामों में, कुछ लोगों की रातें गुजरती हैं हल्ले गुल्ले फन के उसमें, और कुछ लोगों की रातें गुजरती है मुसल्ले पे। सिर्फ इतना बताएं, क्या अल्लाह ताला दोनों को बराबर कर देगा क़यामत में? क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? खुद ही आप इंसाफ करें। कितना मुश्किल है नींद को छोड़ के वजू करना और मुसल्ले पे खड़ा होना। एक बंदा इस मुशक्कत को करता था और दूसरा वैसे ही फन के लिए किसी क्लब में कहीं सोफे पे बैठा हुआ, किसी सिनेमा में, किसी रौनक मेले में रात गुजार रहा है।
क्या दोनों आपको इक्वल लगते हैं? तो अल्लाह की नजर में कैसे बराबर हो जाएंगे फिर? वो तो सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला है। तो इनको कितनी फिक्र है, ये दुनिया में कैसे रहते थे देखें। रूटीन यहीं से पता चलती है ना कि जन्नत में जाने वाले कौन है। आप अचानक थोड़ा ही आप जाके कि बहुत ही एकदम आप नेक हो जाएंगे, कयामत आते ही बस जो है ना हमने पता नहीं क्या बन जाना है, कोई वलीउल्लाह बन जाएंगे। ऐसे नहीं है, यहीं पे अपनी रूटीन देखें, मैं कैसी जिंदगी गुजार रही हूं, मेरे शबो रोज कैसे गुजर रहे हैं, तभी कुछ उम्मीद कर सकते हैं ना। और बेवकूफ है वो जो बस अल्लाह ताला की मगफिरत के ऊपर और उसके ऊपर भरोसा करते हुए गुनाह करता रहे, ये वो खुद ही माफ कर देगा ना। तो यहां पे वो लोगों की रूटीन बताई जा रही है कि उनकी रातें कैसे गुजरती थी। अब हम भी अपनी रातों का जरा जायजा ले लें कि हमारी रातें वीक डेज में इसलिए हम जल्दी सोएं कि हमारी नीयत क्या है। क्या नीयत होती है? सुबह जॉब पे जाना है इसलिए जल्दी सो जाओ, बच्चों ने स्कूल जाना है इसलिए जल्दी सो जाओ। कौन इसलिए जल्दी सोता है कि मैंने अल्लाह के हजूर खड़े होना है तो मुझे इसकी फिक्र है तो मैं इसके लिए जल्दी सो। उस बंदे का सोना भी इबादत बन गया, सुभान अल्लाह, उसका सोना भी इबादत है क्योंकि वे ये सोच के सो रहा है कि मैंने अल्लाह की खातिर उठना है। किसी ने तो बच्चे की खातिर उठना है, किसी ने जॉब की खातिर उठना है, किसी ने अपने बिजनेस की खातिर उठना है और किसी ने अल्लाह की खातिर उठना है। बहुत फर्क है इनमें। तो उनकी ये रूटीन होती थी। अब हम सारे अपने आप को चेक करें, किसके लिए उठना हमारे लिए आसान है? सर्दी सख्त होती है, बाहर बर्फ पड़ रही है, लेकिन बच्चे ने स्कूल जाना है तो हम गर्म बिस्तर छोड़ के भी खड़े हो जाएं और अल्लाह के हजूर खड़े होना है तो हमारे लिए फजर पढ़ना भी मुश्किल हो जाए। खुद ही चेक कर लें अपने आप को, हम कहां पे खड़े हैं। और फिर उस वक्त क्या हम तौबा इस्तगफार करते हैं? सबसे बेहतरीन उस वक्त की दुआ है इस्तगफार। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा गुनाह का इतराफ करता है फिर तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं। और इस वक्त जिस वक्त के इंसान को खुद अल्लाह ताला ने अप्रिशिएट किया ऐसे बंदे को, इस वक्त की तौबा तो और भी बेहतरीन है। तो बाज़ लोग फिर कहते हैं हम क्या करें, हमारी फिर भी नहीं दुआ कबूल होती। तो देखिए दुआ कबूल होने की शरायत के मुताबिक तो दुआ करें ना। उसकी शरायत क्या है? या आपका जहन भी तो हाजिर हो, ये ना हो कि आप उस वक्त तस्बीह लेके बैठ जाएं कि हाँ मैंने वो इस्तगफार करने का कहा है तो यहाँ पे मैं एक इस्तगफार की तस्बीह कर लूं या सैयदुल इस्तगफार दुआ है बस वो पढ़ लूं। नहीं, जहन को हाजिर करें, बेपरवाही बेतवज्जी से दुआ ना करें। और ये कि खाना पीना आपका लिबास पाक हो, पाक साफ हो और हलाल जरिए से हो, ना पाक और हराम खुराक और हराम लिबास के साथ भी दुआ नहीं कबूल होती। और ये कि किसी रिश्ते को काटने की दुआ ना हो, किसी गुनाह की दुआ ना हो, लोगों में जुदाई कराने की दुआ ना हो। और फिर दुआ के कबूल होने में जल्दी तो ना करें ना, बस आप मैंने दुआ की है बस कबूल होनी चाहिए। कभी इस तरह भी होता है कि जो चीज इंसान मांग रहा होता है वो उसके लिए अच्छी नहीं होती, अल्लाह ताला को पता होता है कि ये इसके लिए बुरी है, इसलिए अल्लाह ताला उस चीज के बदले में, आपकी दुआ जाया नहीं जाती, उसके बदले में कोई और खैर अता फरमा देते हैं या कोई आने वाली मुसीबत आपके ऊपर थी वो टाल देते हैं। अब वो क्या पता, कोई हो सकता है कोई बीमारी आने वाली हो, कोई आफत आने वाली हो, कोई हादसा आने वाला हो, उसको अल्लाह ताला टाल दे। तो कभी इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, बेसब्री नहीं करनी चाहिए। देखिए आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कहा जाता है तकरीबन 300 साल बाद कबूल हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला मक्का में एक नबी को भेज, ये दुआ की थी तो तकरीबन 2500 साल बाद कबूल हुई थी। 2500 साल बाद, कब के इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हुए, कब के उनके बेटे फौत हो चुके हुए, 2500 कोई कम अरसा है? तो कितनी उन्होंने तो नहीं कहा मेरी दुआ नहीं कबूल हुई, पैगंबर है और उनकी दुआ कबूल होने में कितना कितना अरसा लगा। तो खैर हमारा इतना हौसला तो नहीं है जितने अंबिया अलैहिस्सलाम की कुव्वत बर्दाश्त थी, हौसला था। अल्लाह ताला हमें ऐसे इम्तिहान में ही ना डाले और ऐसे बोझ ना डाले जिनको बर्दाश्त करने की हमें ताकत ना हो। ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اس چیز کو زندگی میں شامل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں. بالا خانے کیسے سمجھیں گے؟ جیسے ملٹی سٹوری بلڈنگ آپ کہتے ہوئے بھی نہیں اچھا لگتا کیونکہ آپ کے ذہن میں شاید کوئی ہائی رائز بلڈنگ آنے شروع ہو جائے. ایسی نہیں, مطلب اونچی اونچی مطلب عمارت جیسے ہوتی ہے جس کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے. اللہ عالم وہ کیسی ہوگی, لیکن تھوڑا سا شیشے کے ساتھ آپ مماثلت کر سکتے ہیں. یہ سن کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ یہ کن کے لیے ہے؟ فرمایا, ان لوگوں کے لیے جو نرمی سے بات کرتے ہیں, سافٹ اسپوکن, اور دوسروں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں. دوسروں کو کھلائیں کھلائیں کھلائیں, یہ جنت میں لے جانے والے کی وہ بالا خانے اس کو ملیں گے. اور جب لوگ سوتے ہیں تو یہ نمازیں پڑھتے ہیں, یعنی تہجد گزار ہیں. یہ تین صفات اہم صفات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کھانا کھلاتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو اور سلام کیا کرو, اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوں تو نماز ادا کیا کرو, تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو ان چیزوں کو ہم لکھ لیں کہیں کہ کیا کیا ہمارے کرنے کے کام ہیں. کھانا کھلانے سے کھانا کم نہیں ہو جاتا, ختم نہیں ہو جاتا, لیکن یہ وہ صفت ہے جو جنت میں سلامتی کے ساتھ لے جائے گی. صلہ رحمی کرو, سلام کرو, تہجد گزار بنو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شروع شروع میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے گئے, اور اس مجمع میں میں بھی تھا. اللہ ہی, آپ کے مبارک چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اتنا تو میں نے یقین کر دیا کہ یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی نا, جو میرے کان میں پڑی تھی, وہ یہی بات تھی کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ یہ کیا کرو تو تم سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ. تو ان کی اگلی صفت کیا ہے؟ محسنین کی. کیسے ہوتے ہیں محسنین؟ کوئی ہوائی مخلوق نہیں ہے کہ کہیں اوپر سے اترے میں, وہ بھی انسانوں میں سے ہی ہیں, ہمارے جیسوں میں سے ہی ہیں, ہم بھی محسن بن سکتے ہیں. کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو امپوسیبل ہو. ہم بھی اس فہرست میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں کہ ہم میں بھی یہ کوالٹیز ہوں. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, اور ان کے مالوں میں حق تھا سوالی کے لیے اور محروم کے لیے. دنیا میں ہوا کرتے تھے نا, تو ان کے مال میں سائل کے لیے بھی حق ہوتا تھا اور محروم کے لیے بھی. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ہاں, یہ فرق ہے. ایک تو ہے سائل, سائل جو مانگنے والا, سوالی سے پتہ چل ہی جاتا ہے نا, سوالی. اور دوسرا محروم, یعنی محروم وہ ہے جو, یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پہلے ہو, مالدار ہو پہلے, لیکن اب اس کا مال ختم ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ کہیں کسی کو بزنس میں اتنا گھاٹا ہو گیا کہ پہلے اچھا بھلا تھا لیکن اس کے بعد سب ختم ہو گیا. جی کہیں سیلاب آ گیا, کہیں طوفان آ گیا, اچھے بھلے گھر بار رکھنے والے تھے, سب تباہ ہو گیا. کہیں کسی کے آگ لگ گئی, آگ نے ایسا کیا کہ سارا گھر بار سب چیز ختم ہو گئی, جلا ڈالا, کام کاروبار کچھ بھی نہیں رہا. تو وہ ہے جس کو ہم کہیں گے محروم. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ بھی ہے, اس سے مراد وہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں جس, جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان کا کچھ سلسلہ کمانے کا ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ ان کو کافی ہو جائے. یعنی جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں نا ہینڈ ٹو ماؤتھ, بس ہینڈ ٹو ماؤتھ رہنے والے لوگ ہیں, بس اتنا ہی ہے کہ بس گزارا چل جاتا ہے, دیٹس اٹ, اس سے زیادہ نہیں ہے. پھر اس سے یہ بھی مراد ہے کہ تیسرا لکھیں, محروم سے مراد وہ بھی ہے جو حاجت کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا. ایک تو تھا نا سوالی لسائلی, اور یہ اس کا اپوزٹ ہے, یہ سوال نہیں کرتا لوگوں سے. لوگوں سے لپٹ لپٹ کے ان سے سوال کر رہا ہو کہ مجھے کچھ دے دو اللہ کے واسطے پہ, اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو, ایسے نہیں کرتا. یہ بولتا ہی نہیں ہے, کچھ کہتا نہیں ہے, ضرورت کا اپنے اظہار نہیں کرتا. اور یہ بھی کہا گیا کہ اسی وجہ سے جو نادان لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو غنی اور خوشحال سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ بیچارہ کبھی سوال ہی نہیں کرتا نا. तो इसको इसकी पहचान उसके चेहरे से हो जाती है, उसके फकर से उसको पहचान सकते हैं, लेकिन वो लोगों से लिपट लिपट के गिड़गड़ा गिड़गड़ा के मांगता कुछ नहीं है। साहिल की जरूरत तो उसके सवाल करने से पता चल जाती ना, इसकी जरूरत का पता नहीं चलता। अच्छा तो और फिर एक और भी इसमें है हदीस के कौन है महरूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिस्कीन सिर्फ वही लोग नहीं है जो घूमते फिरते हैं और जिन्हें एक दो लुकमे या एक दो खजूरें तुम दे दिया करते, जैसे हमारे यहाँ होते ना फकीर तो एक दो उसको लुकमे खजूरें दे देते, बल्कि हकीकतन वो लोग हैं जो इतना नहीं पाते कि उनकी जरूरत पूरी हो जाए ना, अपना हाल काल ऐसा बना के रखते हैं अपनी हालत, कोई फटे पुराने कपड़े नहीं पहन के रखते कि किसी के ऊपर उनकी हाजत और इफलास जाहिर हो जाए कि कोई इनका सदका ही दे दे। तो इनकी उनको आपको पहचानना पड़ता है। और आप जैसे हमारे मुल्कों में देख लेंगे सफेद पोश लोग जिनको कहते हैं ना, कुछ किसी से कहते हैं ना कुछ है, आप खुद जाने कि ये इनकी जरूरत है। उनके घर में कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही घर में कुछ है ही नहीं, कुछ चीजें भी होंगी, कुछ पड़ी होंगी, कोई सोफा भी होगा, कोई बेड भी होगा, हो सकता है कोई टीवी भी हो, कोई ऐसी चीज भी हो, लेकिन उनके आप उनके फखर को पहचानने की ये जरूरतमंद है। हम कभी कभी ऐसी चीजों को देख के ना दो चार चीजों को हम कहते हैं इसको क्या जरूरत है, इसको तो कुछ भी जरूरत नहीं, हालांकि वो बंदा हैंड टू माउथ होता है, वो किस तरह से मुश्किल से अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहा होता है। तो ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, इसके लिए भी नजर चाहिए। तो वो दोनों को देते हैं, साहिल को भी और महरूम को भी। इससे पता चलता है कि जो सवाली जो ये फकीर हमारे से नहीं अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, उसको भी कुछ ना कुछ दे दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया उनके मालों में हक है, साहिल का भी हक कहा। समझ रहे हैं आप ये लफ्ज कितना अहम है यहाँ पे कि उनके मालों में हक है। हक क्या होता है? जो किसी का राइट होता है। और आप खैरात देने वाला आपका अंदाज अलग होता है और जिसको आप हक उसका दे रहे होते हैं उसका अंदाज अलग होता है। देखिए आप समझते हैं कि आपकी औलाद का हक है आपकी कमाई पे, तो क्या उनको देते हुए आप उसको खैरात समझते हैं? बस ऐसे ये तो मतलब ऐसे डिग्रेड करते हुए देना नहीं ना। वालदेन का आप हक समझते हैं अपनी कमाई पे, तो क्या उनको ऊपर खर्च करते हुए आप इसको खैरात समझ के करते हैं? या बीवी का हक है शौहर के माल पे, तो उसके ऊपर खर्च करते हैं आदमी उसको खैरात तो नहीं समझता ना। इसी तरह जो इन्फाक फी सबिल्लाह है, जो किसी की आप मदद करते हैं, वो इस तरह से नहीं डिग्रेड करके नहीं दे सकते आप, बल्कि उसका हक समझ के उसको दे कि ये माल इसी का था ना, अल्लाह ताला ने मेरे माल में इसका इसके लिए हक रख दिया, अब मैं सिर्फ इसको इसका माल दे रहा हूं, ये इसी का है। हाँ इसका एहसान है कि इसने अपने हक को कबूल करके मेरे ऊपर से ये अमानत का बोझ उतार दिया, ये तो इसका हक ही था। तो दोनों में कितने आपके एटीट्यूड मुख्तलिफ हो सकते हैं ना। एक बहुत ही प्यारी बात है कि एक तफसीर में थी कि अगर कोई शख्स किसी साहिल को या महरूम को देता है ना, तो वो उन पर कोई एहसान नहीं करता, बल्कि उसके माल में उनका हक था जो उन हकदारों को उसने अदा किया, और अगर उनका हक उनको अदा नहीं करेगा तो वह जालिम होगा, गुनाहगार होगा। और अल्लाह ताला जिसको उसकी जरूरत से ज्यादा कोई चीज देता है तो वो ज्यादा इसलिए देता है कि दूसरों के हक उसके अंदर डाल देता है उसकी कमाई में। जैसे बहुत प्यारी इन्होंने मिसाल लिखी कि जैसे गाय बकरी या ऊंटनी का दूध लोग पीते हैं, इसलिए अल्लाह ताला उनमें उनकी बच्चों की जरूरत से ज्यादा दूध रखता है। ज्यादा दूध होता है इस वजह से ज्यादा होता है वो कि उसके अंदर दूसरों का भी हक होता है अल्लाह ताला, इसलिए गाय का दूध देखिए कितना ज्यादा होता है। अब बिल्ली का दूध उतना तो नहीं होता, कुत्ते का उतना तो नहीं होता, हराम जानवरों का दूध कोई इंसान नहीं पीता, इसलिए उनमें उतना ही सिर्फ दूध रखा होता जो उनके बच्चों की जरूरत के लिए काफी होता है। लेकिन जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया ना, तो वो उस इसलिए ज्यादा दिया है कि उसमें से इंसानों ने भी पीना है, इसलिए उसको ज्यादा दिया। तो जिसके पास माल ज्यादा है वो सिर्फ उसके लिए ही नहीं है, वो अल्लाह ताला ने उसको इसलिए ज्यादा दिया हुआ कि तुम्हारे माल में हक दूसरों का भी है। हम तो विराजमान हो जाते ना पूरे उसके ऊपर कि बस हमारा है, और ये हम जो इसको देख रहे हैं तो इसके ऊपर बड़ा एहसान हमने कर दिया कि हमने इतना डोनेशन दे दिया और हमने इतना कर दिया। और जो कोई डोनेशन भी मांगते हैं वो भी साइल हो गया ना, सवाली हो गया, आस कर रहा है, तो हमारे मालों में उसके लिए भी हक है, अल्लाह ताला ने हक रख दिया। अब आपको नहीं पसंद आता आप थोड़ा दे दें, लेकिन उस चीज को कंडेम करना, बुरा भला कहना और डिग्रेड करना और बिल्कुल ऐसे समझना कि हम खैरात दे रहे हैं और जैसे ये गिरे पड़े हैं, ये नहीं जायज, क्योंकि उसका तो हक है, वो अपना हक मांग रहा है। और कोई अपना हक मांगे तो क्या बुरा है इसमें? आगे बच्चे कोई चीज मांगते हैं आप तो बुरा नहीं मानते, 10 दफा मांगते हैं दिन में, रोज मांगते हैं फिर भी नहीं बुरा मानते। और कोई और मांगे, कोई डोनेशन मांगे तो आप कहते हैं इनका तो काम ही यही है, उसका तो अल्लाह ने हक रखा, आपको अल्लाह ने इसीलिए तो ज्यादा दिया है कि आपके माल के अंदर दूसरों का रखा था। अगर आपके माल में दूसरों का ना होता तो अल्लाह ताला सिर्फ आपकी जरूरत का आपको देते, फिर कोई जरूरत ही नहीं थी किसी को देने की। तो इसलिए, लेकिन ये भी है कि वैसे किसी इंसान को अपना माल ज्यादा करने के लिए ऐसे ही मांगते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपना माल ज्यादा करने के लिए लोगों से सवाल किया वो सिर्फ अंगारों का सवाल कर रहा है, चाहे सवाल कम करे या ज्यादा करे, अपने लिए अंगारे मांग रहा है, आग के अंगारे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स हमेशा लोगों से सवाल करता रहता है, हत्ता कि क्यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि इसके चेहरे पे गोश्त की एक बोटी भी नहीं होगी, गोश्त ही नहीं होगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, पता नहीं कैसा उसका भयानक चेहरा होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स अपनी रस्सी ले, फिर लकड़ियों का गट्ठा अपने कमर पर लाद कर लाए और इन लकड़ियों को फरोख्त करे और इससे अल्लाह उसके चेहरे को सवाल से महफूज रखे, तो ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है बजाय वो लोगों से सवाल करे और वो उसको दें या फिर ना दें, उनकी मर्जी है। यानी तुम मुशक्कत कर लो, अपने हाथ से कमाई कर लो, तुम लकड़ियां उठा के अपनी कमर पे लाद के जाओ और उनको फरोख्त कर लो, यानी एक बहुत छोटा सा काम है ना और मुशक्कत वाला काम है, वो काम कर लो, वो बेहतर है तुम्हारे लिए बजाय तुम लोगों से मांगो कि मुझे इतने पैसे दे दें। हज़रत हकीम बिन हज़्ज़ाम बयान फरमाते कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आपने मुझको कुछ दे दिया, मैंने फिर आपसे सवाल किया फिर आपने मुझे दे दिया, फिर आपने मुझसे फरमाया ऐ हकीम ये माल सरसब्ज और मीठा है, जो इस माल को सखावत नफ्स के लिए इस्तगना से लेगा, यानी गनी होके लेगा कि इससे बेनियाज है, तो इसमें बरकत दी जाएगी, यानी अल्लाह उसको खुद ही दे दे, वो मांगता नहीं है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। और जो शख्स अपने आप को गिरा के इस माल को लेगा तो उसमें बरकत नहीं दी जाएगी। और आप वाकई देखें अगर किसी से मांग के कुछ लिया होगा ना उसमें बरकत नहीं होती, और वो उस शख्स की तरह होगा जो खाता है और उसका पेट नहीं भरता। और फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर वाला हाथ देने वाला होता है, नीचे वाला लेने वाला। मांगना बड़ा आसान लगता है, जो लोग इससे मांग ले उससे मांग ले तो, लेकिन उसमें से बरकत उठा ली जाती है। और ये हाथ अच्छा नहीं है, देने वाला हाथ अच्छा है। हज़रत हकीम बयान फरमाते हैं कि फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह उस जात की कसम जिसने आपको हक दे के भेजा है, अब के बाद मैं आपके बाद किसी के माल को कम नहीं करूंगा, यानी किसी से मांगूंगा ही नहीं हत्ता कि मैं दुनिया से चला जाऊं। और वाकई फिर उन्होंने ऐसा किया। लेकिन यहां पर देखिए सवाली को कुछ नहीं कहा गया, देने वाले को कहा गया। तो मैं आपको वैसे एक बात बता रही हूं, लेकिन सवाली को ऐसे हदीस के अंदर है कि उसको मना किया गया तुम भी ना मांगो, लेकिन यहां पे उन लोगों के लिए कहा गया जो देने वाले हाथ रखते हैं, तुम दो। आप यहां तक अंदाजा करें कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मक्के जा रहे थे कि रास्ते में एक कुत्ता पास आके खड़ा हो गया, आपने जिबा करदा जो जिबा की हुई थी बकरी उसका एक शाना काट के उसकी तरफ डाल दिया, फरमाया लोग कहते हैं ये भी महरूम में से, वो खड़ा हुआ बेजुबान है ना, कुछ कह नहीं सकता, मांग तो नहीं सकता, अब वो खड़ा हुआ आके पास खड़ा हो गया जब बकरी जिबा हुई तो उसको भी उठा के दे दिया। हम कभी ऐसे सोचते हैं, हम तो दूर दूर करके और उसको पत्थर ही मार दें कि चला जाए यहां से। लेकिन इन लोगों की देखिए जो आयतें पढ़ते थे कुरान पढ़ते थे कितनी डेप्थ में देखते थे ना चीजों को। तो इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं महरूम वो है जिसके पास مال نہیں ہے، چاہے کسی وجہ سے بھی نہیں ہے، چاہے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکا، چاہے اس کو کمانے کا سلیقہ نہیں آتا، جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا، نہیں اس کو ہو سکتا ہے کمانے کا سلیقہ ہی نہ آتا ہو، یا اس کا کام ہی نہیں چلتا، اب وہ اپنی کوشش کر بھی رہا ہے کام چل ہی نہیں رہا، یا کسی آفت کے باعث اس کا جو جمع شدہ مال تھا ضائع ہو گیا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اب ہم صرف یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہاں بس اس کے پاس نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی اگر ایفرٹ کر رہا ہے اس کی ایفرٹ اس طرح سے نہیں برابر ہو رہی ہے، وہ نہیں پا رہا تو اس کو بھی دینے کا حق ہے، کسی کو کمانے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا، اس کو ڈھنگ ہی نہیں پتا ہے، اس کو وہ طریقے ہی نہیں آتے، اس کی وجہ سے وہ محروم ہے، تو اس کو نہیں ہم دیتے، اچھا بھلا ہے خود جا کے کرے۔ تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، للموقنین، اور زمین میں کئی نشانیاں یقین رکھنے والوں کے لیے، اگر تم اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ تو تمہیں بہت ساری نشانیاں ملیں گی جو اللہ کی پہچان بتاتی ہیں، جو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قیامت آنی ہے، بہت ساری نشانیاں بکھری ہیں۔ اب بات تو یہ ہے نا کہ ہم ان نشانیوں کے اوپر غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی، کیونکہ وہ نشانیاں خود بول کے زبان سے نہیں بتاتی کہ ہم اللہ کی نشانی ہیں، بلکہ وہ اپنے زبان حال سے بتا رہی ہیں۔ سورج ایک اللہ کی نشانی ہے، وہ بھی ایک پیغام سنا رہا ہے، وہ سمجھ لیں نشر کر رہا ہے اپنا پیغام، براڈ کاسٹ کر رہا ہے۔ درخت ہے، اس پہ ہرے بھری پتے لگے ہیں، وہ بھی ایک میسج براڈ کاسٹ کر رہا ہے۔ دریا ہے، وہ بھی کچھ بتا رہے ہیں، یہ سب کچھ کچھ کہہ رہے ہیں، مگر انسان ہے کہ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں بغیر ان کا کوئی بول سنے ہوئے، بغیر ان کی طرف توجہ کیے ہوئے۔ آسمان کی جو بلندی ہے وہ بھی کچھ بتا رہی، اور زمین پہ تو اتنا کچھ ہے، اور ہم سے ہم کلام ہیں، ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا تھا اور وہ اپنی زبان میں اس کو نشر کر رہا ہے، لیکن انسان دوسری آوازوں میں اتنا کھویا ہوا ہوتا ہے کہ کائنات کا خاموش پیغام سنتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے، گزر جاتا ہے اس کے پاس سے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی پیغام دے رہا ہے۔ اتنے ہم آج اپنی دنیا میں گم ہیں، اپنے آپ میں گم ہیں، تو یہ سب کھڑے ہو کے ہمیں پیغام دے رہے ہیں، سب ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی، اپنی جانوں میں بھی تمہارے نشانیاں ہیں، آیات ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ انسان کا پیدا ہونا، انسان کا پلنا بڑھنا، پھر انسان کی جوانی، پھر انسان کا وہ جوش اور ولولا، پھر اس کا بڑھاپا، یہ سب کیا نشانیاں نہیں ہیں؟ پھر انسان کے اعضاء، یہ آنکھ کیا ہے؟ گوشت کا ایک لوتھڑا ہی تو ہے، کیسے اس کے اندر دیکھنے کی طاقت ہے؟ ہاں باقی بھی جگہ تو گوشت ہی ہے، بوٹی ہے، کیا ہے؟ ٹیشوز ہیں، مسل ہیں، کیا ہیں؟ باقی چیزیں تو نہیں دیکھتی، اسکن تو نہیں دیکھ رہی ہے، کان تو نہیں دیکھ رہے، ناک تو نہیں دیکھ رہی، آنکھ ہی کیوں دیکھ رہی ہے؟ کیا چیز ہے اس کے اندر ایسی؟ کون سے کیمرے فٹ ہیں اس میں؟ یہ دماغ کو دیکھ لو، جس کو آج تک سائنسدان پورے طور پہ سمجھ ہی نہیں سکے، یہ دماغ ہے کیا چیز؟ انسان قبر میں جاتا ہے تو اب سائنس نے کہا ہے، پتہ نہیں بہت ہی مائنر پرسنٹیج ہے جو انسان نے اپنے برین کی یوز کی ہوتی ہے، باقی سارا قبر میں ساتھ ہی لے جاتا ہے، پورا یوز بھی نہیں کیا ہوتا، اتنا انٹیلیجنٹ برین اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر غور نہیں کرتے؟ جس جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے، اور بھی زیادہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور بھی زیادہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ایک بنانے والا ایک رب ہے جس نے اس کو بنایا، یہ خود ہی تھوڑی بن گئے ایسے، تو تم اس سے اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہو؟ پہچانو ان کے ذریعے، یہ نشانیاں اسی لیے ہیں۔ چلو زمین میں دیکھ لو، زمین میں نہیں دیکھتے، اپنے آپ میں ہی دیکھ لو، ایک ایک انسان کے جسم کا حصہ، ایک ایک سسٹم کیسے کام کرتا ہے، سبحان اللہ، ایک ایک سسٹم کو انسان دیکھے، کیسے آپ انگلی رکھتے ہیں گرم دیچکی کے اوپر اور ایک دم آپ کی انگلی وہاں سے اٹھ جاتی ہے، کیوں؟ ایک سیکنڈ بھی زیادہ ہوتا ہے، سیکنڈ سے بھی جلدی، کتنی تیزی سے میسج برین تک گیا اور برین نے کہا کہ اٹھا لو یہاں سے، سوچتے نہیں ہوں کیسے یہ برین فنکشن کرتا ہے، کیسے یہ آپ کا کمر کی بیک بون کیسے فنکشن کرتی ہے، آپ کے جوائنٹس کیسے چلتے ہیں، آپ کی بونز کیسی ہیں، ان کے اندر غور تو کرو، کیسا تمہارا سانس کا سسٹم ہے، کیسا تمہارے میدے کا سسٹم ہے، کیسا تمہارا جسم سے فضلہ نکالنے کا سسٹم ہے، جیسے یہ جہان ہے نا پورا، اس طرح ایک منی جہان انسان کی اپنی ذات کے اندر بھی ہے، یہ جسم جو ہے نا ایک منی جہان ہے، ایک پوری کائنات ہے، باہر ہے سمندر ہے، انسان کے اندر دیکھیں آنسو ہیں، اس کے بھی پانی ہے، باہر پہاڑ ہیں، اگر اس عالم تو انسان کے جسم کی ہڈیاں ہیں پہاڑوں کی طرح، باہر درختوں کی شاخیں اور پتے ہیں، تو انسان کے جسم کے اعضاء وہ شاخوں اور پتوں کی طرح ہی حرکت کرتے ہیں نا، باہر گھاس ہے، انسان کے جسم کے بال ہیں، تو دیکھو کس طرح سے باہر جیسے ایک جہان ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک جہان ہے، باہر زمین میں خاک اور مٹی ہے، انسان کا اپنا جسم بھی مٹی کے ساتھ بنا ہوا ہے اور مٹی کے اندر ہی وہ رول مل جائے گا، تو اگر اس جہان کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں، بہت چھوٹا سا ایک جہان آپ کو یہاں پہ بھی ملتا ہے، افلا تو بصیرون، پھر تم دیکھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، ان کے اوپر کبھی نہیں غور کرتے، اور پھر وفی السماء، اور آسمان میں رزقکم، تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور جس کا تم وعدہ کیے جاتے، یعنی کس کا وعدہ کیے جاتے، عذاب، آسمان سے رزق بھی اترتا ہے، بارش اترتی ہے، ہریالی آتی ہے، پھول پتے پھل فصلیں نکلتی ہیں، اور اس کے علاوہ اسی آسمان سے اللہ چاہے تو عذاب بھی نازل کر سکتا ہے، اور واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ ہریکینز آتے ہیں، ایسی بارشیں ہوتی ہیں کہ فلڈنگ ہو جاتی ہے، ایسی آندھیاں آتی ہیں کہ اٹھا اٹھا کے چیزوں کو ٹورنیڈو کی شکل میں ہو جاتی ہیں، بگولا سا کے چیزوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے، مارتا ہے، کھیتیاں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، پھر اسی آسمان سے اولے برستے ہیں، یہ بعض دفعہ لوگ ان سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اسی آسمان سے ایسی برف اترتی ہے، برف میں لوگ دب جاتے ہیں، تو اس آسمان سے تمہارا رزق بھی اترتا ہے، اسی آسمان سے تمہاری روزی آتی ہے، اور اسی آسمان سے عذاب بھی آ سکتا ہے، تو اس کے بعد کیا فرمایا، یہ ساری نشانیاں دیکھ کے تمہیں یقین نہیں آتا پھر کہ وہ رب جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے، اتنی قدرتوں کا مالک ہے، وہ کیا قیامت کو برپا نہیں کر سکتا، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، بس قسم ہے آسمانوں کے رب کی اور زمین کے رب کی، بے شک وہ البتہ حق ہے، حق ہے، سچائی ہے، ریالٹی ہے، قیامت حق ہے، جزا سزا حق ہے، جنت جہنم حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح حق ہے جیسے تم بولتے ہو، تو اپنے بولنے پہ انسان کو کوئی شک ہوتا ہے، اب یہ میں بات کر رہی ہوں، تو اپنی آواز پہ، اپنے بول پہ تو کسی کو بھی نہیں شک ہوتا کہ یہ میرا ہی بولنا ہے یا کوئی اور بول رہا، اسی طرح قیامت حق ہے، اتنی ہی یقینی ہے جیسے تمہارا اپنا بول یقینی ہے، تمہاری اپنی بات یقینی ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں کھا کے فرما رہے ہیں کہ وہ لازمی آئے گی، اس پہ بھی انسان اگر پھر شک میں ہی پڑا رہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہاں تک پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے، اس کی ہم تلاوت سنتے ہیں، آگے پھر بالکل موضوع چینج ہوتا ہے انشاءاللہ، ڈفرینٹ قوموں کا ذکر، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی کا قصہ آئے گا انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون